ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत सातवें स्कंद का दशम अध्याय और दसवां श्लोक, सातवां श्लोक। प्रहलाद महाराज, भगवान नरसिंह देव प्रकट होने के बाद प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। यदि दास्यसि मे कामान वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानामृदि असंरोहम् भवतस्तु वृणे वरम्। यदि दास्यसि मे कामान वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानामृदि असंरोहम् भवतस्ते वृणे वरम्। यदि दास्यसि मे कामान वरंस्त्वं वरदर्शभ कामानामृदि असंरोहम् भवतस्तु वृणे वरम्। यदि दास्यसि देना चाहते हैं मैं मुझे कामान कुछ कोई कोई चीज जो प्राप्त करने योग्य हो, वरान आपके आशीर्वाद के रूप में, इसमें थोड़ा अलग है। त्वम आपके वरदर्शभ, हे भगवान आप कोई भी वर दे सकते हैं। कामानाम भौतिक सुख की सारी इच्छाओं का, हृदय अपने हृदय के भीतर असंरोहम वृद्धि का न हो, भवत आपसे तू आगे चले कोई बात वृणे मैं प्रार्थना करता हूं वरम ऐसे आशीर्वाद के लिए। अनुवाद एवं तात्पर्य शिला ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा करेक्ट है श्लोक नंबर, बाद में चेंज हो गया पर 7th वर्स 7.10.7 पहले करेक्ट था, फिर इसका हिंदी में अनुवाद है। हे सर्वश्रेष्ठ वरदाता स्वामी, यदि आप मुझे कोई वांछित वर देना ही चाहते हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे हृदय में किसी प्रकार के भौतिक इच्छाएं न रहें। हिंदी भागवतम या हिंदी भागवतम तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी है। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामये, खोल के दो, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्तिर हेतुकी त्वयि। हे प्रभु, न तो मैं संपत्ति चाहता हूँ, न अनेक अनुयायी, न सुंदर स्त्री, क्योंकि ये सब भौतिक इच्छाएं हैं, किंतु यदि मुझे आपसे कोई वरदान मांगना ही हो तो मेरी यही प्रार्थना है कि मैं किसी भी जीवन में जन्म ग्रहण करूं, प्रत्येक दशा में आपकी दिव्य भक्ति से विहीन न हो। भक्तगण उन मायावादी के तुलना में सदैव लाभप्रद स्थिति में रहते हैं, जो प्रत्येक वस्तु को निराकार व शून्य बना देना चाहते हैं। कोई भी मनुष्य शून्यवादी नहीं रह सकता, उसके पास कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। अतएव भक्त सब कुछ ना कुछ रखना ही चाहते हैं। उसका अत्यंत सुंदर वर्णन प्रहलाद महाराज इस प्रार्थना में है। वो बोल रहे हैं, अगर मुझे कुछ आपसे आशीर्वाद लेना ही है तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरे अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं रहे। भगवान की सेवा करने का जो इच्छा है वो भौतिक नहीं है। हरे कृष्ण नरसिंहदेव भगवान की। आपकी आवाज से लग रहा है कि आप दूसरे पार्टी में हो। जोर से बोलिए, भगवान नरसिंहदेव की जय। गुड, वी आर ऑल इन वन पार्टी, प्रहलाद पार्टी। ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज ये पवित्र दिन है, भगवान नरसिंहदेव के आविर्भाव का दिन। भगवान नरसिंहदेव के बारे में प्रभुपाद जी लिखते हैं, लॉर्ड नरसिंहदेव क्रिएट्स ऑस्पिशियसनेस एवरीवेयर एंड रिमूव्स ऑल इनऑस्पिशियसनेस। भगवान नरसिंहदेव प्रकट होकर सारे अमंगल को दूर करते हैं, सारे भय को दूर करते हैं। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्रार्थना युक्त दिन है। आज हम भगवान नरसिंहदेव से प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरे जितने भी बाधाएं हैं भक्ति में, ऑब्स्टेकल्स हैं, जो मुझे भगवत प्रेम प्राप्त करने से रोक रहे हैं, वो सब दूर कर दो। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं नवदीप धाम महात्म्य में कि भगवान नरसिंहदेव से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मेरी राधा गोविंद की सेवा है उसमें जो भी बाधाएँ आ रहे हैं वो दूर कर दो, जिससे अंत में मैं भगवान श्री गौरंग महाप्रभु का प्रेमी बन सकूं। तो रूप गोस्वामी बताते हैं लघु भागवतामृत में कि भगवान के बहुत सारे अवतार हैं और उसमें दो विशेष हैं, एक राम अवतार और एक नरसिंह अवतार। भगवान राम का अवतार विशेष है उनकी सुंदरता के लिए, और भगवान नरसिंह देव का अवतार है विशेष करके उनकी शक्ति के लिए। ऐश्वर्य से समग्र से वीर से श्रेय, भगवान में सारे ऐश्वर्य हैं, लेकिन कोई कोई अवतार में कोई विशेष, कोई कोई चीज़ों का विशेष प्रदर्शन किया जाता है, और नरसिंह भगवान के अवतार में ये शक्ति का प्रदर्शित किया गया। यहाँ पर भगवान क्रोध के भाव में हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि भगवान मतलब एकदम बिना किसी भावना के हैं, उनको कभी क्रोध नहीं आता, न तो कभी मुस्कुराते हैं, बस स्थिर रहते हैं, सिद्ध प्रज्ञ। लेकिन प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर एक प्रार्थना अर्पण की थी। जब प्रभुपाद जी के गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर का आविर्भाव दिवस था, व्यास पूजा दिन, तो इस दिन प्रभुपाद जी ने कविता लिखी थी जो उनके गुरुदेव को बहुत प्रसन्न, बहुत अच्छी लगी। वो कौन सी थी प्रार्थना? इंग्लिश में है वो, एब्सोल्यूट एसेंशन दाओ हैज प्रूव्ड, इम्पर्सनल कैलामिटी दाओ हैज रिमूव्ड। तथा हे गुरुदेव, आपने सिद्ध की है कि भगवान एक व्यक्ति हैं और उनके भी भावनाएं हैं, तो भगवान में भी क्रोध आता है। लेकिन वो क्रोध किस लिए है? भगवान इतने क्रोध में क्यों है? क्योंकि उनके प्रिय भक्त प्रहलाद का अपराध किया गया। तो ऐसे ही हमें भी अगर हम देखते हैं भगवान का अपराध हो रहा है या भक्त का अपराध हो रहा है, तो क्रोधित होना स्वाभाविक है। कभी कभी प्रभुपाद जी भी बहुत गुस्से होते थे जब भगवान की सेवा में कोई अड़चन आती थी, अगर कोई भक्त ठीक से सेवा नहीं करते, तो क्रोध भी वास्तव में भगवान के प्रति सेवा भावना का एक लक्षण है। भगवान श्री कृष्ण का वचन है भगवद गीता में, परित्राणाय साधुनाम विनाशय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए मैं युग युगांतर में प्रकट होता हूँ। आप जानते हैं सत्युग के समय ये असुरों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी हिरण्यकश्यप की। थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड आप जानते हैं कि ये द्वारपाल थे जय और विजय वैकुंठ के दरवाजे के ऊपर। अभी ये साधारण पद नहीं है, भगवान के द्वारपाल बनना यानी बहुत ही उच्च स्तर है। प्रभुपाद जी बोलते हैं जय और विजय भी वास्तव में भगवान के ही पार्षद हैं, और ये जो उनका पतन भी हुआ ये भगवान की लीला थी जिससे वो युद्ध कर सके। अगर भगवान को युद्ध करना है तो अपने ही एक किसी पार्षद को अपने विरोधी बनाकर उसे युद्ध करते हैं। जैसे एक बार एक भक्त ने पूछा प्रभुपाद से कि प्रभुपाद, मान लो मैं भी अगर बहुत खराब व्यवहार करता हूँ, असुर की तरह बनता हूँ, तो क्या भगवान अवतार लेंगे मेरे को मारने के लिए? तो प्रभुपाद जी बोले, नहीं, भगवान ऐसे छोटे मोटे असुर के लिए नहीं आते, कोई लड़ाई के लिए स्टैंडर्ड असुर होना चाहिए। तो ये भगवान की स्वयं की लीला है, लेकिन साथ साथ भगवान को सिखाते भी हैं, क्योंकि हमारे पास सीमित समय है और मैं सब अध्याय से थोड़ा 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 10-10 मिनट बोलना चाहता हूँ, इसीलिए मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। आपने शायद भागवत में पढ़ा होगा कि कैसे जय विजय का पतन का कारण प्रभुपाद जी बताते हैं कि चार कुमार भगवान वैकुंठ भगवान विष्णु का दर्शन करने जा रहे हैं और जय विजय ने उनको रोक दिया और उससे उनको क्रोध आ गया। उनका भी क्रोध स्वाभाविक था, भगवान के दर्शन के लिए उत्सुक थे और कोई अगर उनको रोक रहा है तो क्रोध स्वाभाविक आ जाता। जैसे आप राधा श्याम सुंदर के दर्शन के लिए जा रहे हैं और किसी ने दरवाजे पर रोक दिया आपको, तो क्रोध आ ही जाता है। या भगवान का संग करने जा रहे हैं प्रसादम के रूप में और किसी ने रोक दिया कूपन के लिए, स्वाभाविक क्रोध आ जाता है। या आपके बहुत अच्छा लेक्चर सुन रहे हैं और अचानक लाइट चली जाती है, आपका प्लेयर डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये जो क्रोध है, ये चार कुमारों का क्रोध भी वो भगवान की सेवा में। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं काम क्रोध लोभ मद मोह सबको इनको भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। तो क्रोध भक्त द्वेषी जन, जब भक्तों के द्वेषी के प्रति, हनुमान जी को क्रोध आता है जब रावण भगवान राम का और सीता का अपमान करते हैं, तब हनुमान जी को बहुत क्रोध आता है। इतना क्रोध कि पूरी लंका नगरी को जला देते, और वो भी रावण के खर्चे से, जो तेल वगैरह था रावण के अकाउंट से। तो ये क्रोध भी दिव्य। लोभ किसके लिए होना चाहिए? हरि कथा साधु संघ के लिए लोभ होना चाहिए। आज का दिन है, भगवान का नाम जप के लिए लोभ होना चाहिए, क्योंकि आज हमें प्रसाद लेना ही नहीं है, सुबह भी नहीं, दोपहर को भी नहीं, शाम को 7 बजे तक कितना समय बच जाएगा। नहीं, हम ज़्यादा जप कर सकते हैं, अगर कोई दूसरी सेवा है तो वो सेवा भी ज़्यादा कर सकते हैं। ये लोभ, आध्यात्मिक प्रगति के लिए लोभ, ये बहुत लाभदायक है। एक बार प्रभुपाद जी नरसिंह चतुर्दशी पर लेक्चर दे रहे थे और लेक्चर के एंड में आखिरी सेंटेंस का प्रभुपाद जी बोलते हैं, नरसिंह चतुर्दशी का मतलब क्या है? बोलते हैं नरसिंह द्वादशी का मतलब बताते हैं, डेथ इज कमिंग, लेट मी रिमेम्बर लॉर्ड नरसिंहदेव, बस कि मृत्यु आ रही है, ये भगवान का स्मरण करना है। मतलब भगवान के स्मरण ही वास्तव में जीवन है। एक बार एक भक्त ने प्रभुपाद जी को लेटर लिखा कि अभी रामनवमी का उत्सव आ रहा है, कैसे मनाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोले, जन्माष्टमी, रामनवमी, गौर पूर्णिमा और नरसिंह चतुर्दशी मनाने का तरीका एक ही है। जो अवतार हैं उनकी लीलाओं को पढ़िए और सुनिए और ज्यादा से ज्यादा जप करिए और व्रत रखिए। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है कृपा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हम सबको कोई ना कोई बाधा आती है भक्ति में। आप में से कोई है जिसको भक्ति में, जपा में या सेवा में कोई बाधाएं आती हैं, या कोई है जिसको बिल्कुल बाधा नहीं आती, वो जप करने बैठते हैं और तुरंत प्रेम में मग्न होकर आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। शायद हम सब पहली कैटेगरी में ज्यादा हैं। तो हम नरसिंह भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं आज के दिन, मेरे सारे ऑब्स्टेकल्स दूर कर दो, जितनी बाधाएं हैं। क्योंकि ये भक्ति में बाधाएं आते हैं, अंततः वो भी भगवान के द्वारा ही भेजे गए हैं, इसलिए हम अपनी प्रयास से दूर नहीं कर सकते। वो जितने भी बाधाएं हैं भगवान ने भेजे हैं, इसलिए भेजे हैं कि हमें और दृढ़ बनाने के लिए, परीक्षा लेने के लिए। जैसे पाठशाला में परीक्षा होती है, अभी मान लो पाठशाला में परीक्षा ही नहीं होगी तो कोई विद्यार्थी का प्रगति नहीं होगा। तो परीक्षा किस लिए होती है? देखने के लिए कि विद्यार्थी कितने सिंसियर है। जैसे भगवान परीक्षा देते हैं और पास करने की शक्ति भी भगवान ही देते हैं। ये बहुत अच्छा एग्जाम है, क्वेश्चन पेपर भगवान देते हैं, साथ में आंसर पेपर भी देते हैं। आंसर पेपर क्या है? उनकी कृपा, उनका नाम लेना। तो जब जय विजय इस तरह से चार कुमारों के प्रति अपराध करते हैं तो वो सोचते हैं कि इनके यहाँ वैकुंठ में रहने के योग्य नहीं है, इनको धरती पर चले जाना चाहिए। इनको शाप दे देते हैं असुर परिवार में जन्म लेने, तीन जन्म के लिए। तो आप जानते हैं तीन जन्म, सत्युग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण, और द्वापर युग में दंतवक्र शिशुपाल, और कलयुग में जगाई मधई। तो तीन रूप में प्रकट होते हैं। तो हिरण्यकशिपु भागवत के सातवें स्कंद में बताया गया कि जब एक्चुअली तीसरे स्कंद में कहानी आती है, जब भगवान वराहदेव प्रकट होते हैं और हिरण्याक्ष का वध करते हैं तो उनके परिवार के लोग बहुत दुखी होते हैं, और हिरण्यकशिपु अपने सारे परिवार के सदस्यों को उपदेश करते हैं कि आप दुख मत करो, ये शरीर नाशवान है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। एग्जैक्टली, वो बिल्कुल DYS कोर्स सिखाते हैं, है ना, भगवद्गीता कोर्स। खाली फर्क है हिरण्यकशिपु उवाच, और एकदम परफेक्ट, जैसे जैसे गीता में आप ज्ञान दें उसी प्रकार से समझाते हैं कि शरीर नाशवान है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। लेकिन फर्क यह है कि हिरण्यकशिपु सब जानते हुए भी भगवान की शरण में नहीं आते। प्रभुपाद जी बोलते हैं अनादि काल से ये दो प्रवृत्ति देखी जाते हैं, एक सुर और एक असुर, दो श्रेणी के व्यक्ति हैं। असुर वो हैं जो भगवान की आज्ञा नहीं पालन करना चाहते, भगवान की सत्ता का विरोध करना चाहते, और सुर मतलब जो भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहे। तो हम सबके पास चॉइस होती है, या तो हम हिरण्यकश्यपु की तरह बने कि भगवान की आज्ञा का अवलंघन करें और अंत में काल के प्रभाव से नष्ट हो जाएं, या फिर हम प्रहलाद की तरह बने, भगवान को समर्पित रहें और अंत में भगवान हमें अपनी गोद में ले लें। अधिकांश भक्तों की स्थिति बीच में है। यहाँ पर शायद ही कोई व्यक्ति है जो हिरण्यकश्यपु की तरह होगा, ये भगवान का विरोधी होगा। हम सब भगवान के भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब हमारी स्थिति प्रहलाद की तरह भी नहीं है कि हम पूर्ण समर्पित हों। तो ये दैवी प्रवृत्ति और असुरी प्रवृत्ति दोनों हमारे अंदर है। ये हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से असुरी प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है और दैवी प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। रावण की तरह भावना नष्ट हो जाती है और हनुमान जी की भावना बढ़ने लगती है। तो हिरण्यकशिपु इस तरह से अपने रिश्तेदारों को समझाने के बाद में फिर उन्होंने निश्चय के बदला लेना चाहता हूँ। उन्होंने अपने पार्षदों को भेजा सब जगह पर ब्राह्मणों को और वैष्णवों को तकलीफ देने के लिए, घरों में आग लगाने के लिए, और स्वयं वो तपस्या करने के लिए गए जंगल में। उनकी इच्छा थी कि मैं अमर बन जाऊँ। हजारों साल तक इस तरह से अपने हाथों को ऊपर करके खड़े रहे एक स्थान पर, और उस समय जब वो तपस्या के लिए गए हुए थे देवताओं ने देखा कि हिरण्यकशिपु नहीं है, और उस समय उनके पत्नी इसका नाम था कायादु, सब देवता मिलकर ले गए। उनकी योजना यह थी कि कायादु तो स्त्री है, उसको हम नहीं मार सकते, मारना भी नहीं चाहते। उनको डर क्या था कि हिरण्यकशिपु का बेटा होने वाला है, कायादु के गर्भ में बालक प्रहलाद थे, उनको लगा ये हिरण्यकशिपु का बेटा है तो ये तो और बड़ा महाहिरण्यकशिपु होगा, ये ना ये नेक्स्ट वर्जन बहुत ही ज़्यादा असुर होगा, इसको हम मार डालेंगे। तो उनका प्लान ये था कि इसको जंगल में ले जाएंगे और एक सही समय पर जब बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे को मार के हम माँ को छोड़ देंगे। लेकिन रास्ते में नारद मुनि मिले, आप जानते हैं नारद मुनि का तो इंटरनेशनल पासपोर्ट और वीज़ा है, इंटर यूनिवर्सल, वो सब जगह पे पहुंच जाते हैं। वो त्रिकालज्ञ हैं, नारद मुनि का एक नाम त्रिकालज्ञ भी है, ऑलमोस्ट भगवान के स्तर पर हैं, जो शुद्ध भक्त हैं नारद मुनि, कभी कभी उनके लिए भगवान नारद कहा जाता है। तो नारद मुनि ने देवताओं से पूछा ये क्या आप कर रहे हो, नहीं 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 हम मारने वाले नहीं, हम तो सिर्फ बेटे को मारने वाले। नारद मुनि ने समझाया कि आप जानते नहीं हो कि इनके गर्भ में एक महाभागवत भक्त हैं, आपको इसकी वंदना करनी चाहिए। और सारे देवताओं ने फिर क्षमा मांग के परिक्रमा की, बालक की मतलब कायादु की, दोनों की परिक्रमा हो गई, फिर वो चले गए। नारद मुनि फिर कायादु को अपने आश्रम में ले गए, और ये स्थान आज भी महाराष्ट्र में है, पंडरपुर के पास एक स्थान है, नरसिंह भगवान का मंदिर है जिसको नीरा नरसिंह बोलते हैं, और वहां पर नारद मुनि कायादु को उपदेश करते हैं, और कायादु के साथ साथ बालक प्रहलाद भी सुन लेते हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो जब माँ के गर्भ में होते हैं तभी भी वो जो माँ पढ़ते हैं सुनते हैं वो भी बच्चे बालक भी वही सुनता है। और फिर काल उपरांत बालक का जन्म होता है, और कायादु तो थोड़े समय के बाद भूल जाते हैं क्या उन्होंने श्रवण किया, लेकिन नारद मुनि प्रहलाद महाराज को याद रहता है। तो प्रहलाद महाराज का पहला भागवतम क्लास उनके गर्भ में ही अटेंड किया उन्होंने, दिव्य ज्ञान, जो दिव्य ज्ञान का आदान प्रदान है वो किसी भौतिक परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, अहेतु की अप्रतिहता, किसी भी स्थिति में हम भगवान की भक्ति कर सकते। इसीलिए प्रहलाद महाराज स्वयं श्रवण कीर्तन पर जोर देते हैं, क्योंकि जैसी हमारी आयु बढ़ती है शरीर में वृद्धावस्था आने लगती है तो बाकी सब जो इंद्रियां हैं, बाकी सब सेवाएं थोड़े करना मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन स्पेशली नाम जप करना, भगवान की कथा सुनना, ये ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये सेवा है जो हम आशा है कि ज़्यादा आखिरी क्षण तक करते रहें, यही सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। तो प्रहलाद महाराज के अंदर स्वाभाविक भगवत प्रेम जागृत था, और वो अपने मित्रों को भी ऐसा उपदेश करते थे। प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकशिपु अपने बेटे को पाठशाला में भेजते हैं, शंड और अमरकर उनके टीचर्स होते हैं। इनफैक्ट प्रहलाद महाराज जहाँ पर बड़े हुए, जो हिरण्यकशिपु का महल है, वो कुछ लोग बताते हैं कि वो मुल्तान में है, जो अभी पाकिस्तान का भाग है, पंजाब का भाग था लेकिन अब पाकिस्तान में। प्रभुपाद ऐसे तात्पर्य में लिखते हैं कि लॉर्ड नरसिंहदेव अपीयर्ड इन मुल्तान, मुल्तान में। आप में से कोई गए हैं मुल्तान में कभी, नाम सुने अपने मुल्तान? मेरे माता पिता पार्टीशन से पहले वहीं रहते थे, तो वो उस तरफ थे मुल्तान से। वो बताते हैं कि अभी भी वहाँ पर एक प्रहलादपुरी है जगह, और वहीं पर जगह है जहाँ पर हिरण्यकशिपु का महल था, भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए। कई लोगों ने उस स्थान को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन एक विशेष मंदिर है जो कोई भी तोड़ने जाता है वो व्यक्ति स्वयं मर जाता है। अभी भी पाकिस्तान में ऐसी कुछ जगह है। तो ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर अधिकांश लोग भारत में मानते हैं कि भगवान नरसिंहदेव जहाँ पर प्रकट हुए वो स्थान है अहोबिलम, जो दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में। आज भी वहाँ पर बहुत सुंदर नव नरसिंह, आप में से कोई गए हैं अहोबिलम? नाइन नरसिंह टेम्पल्स हैं, मलोल नरसिंह, लक्ष्मी नरसिंह, कारंजा नरसिंह, उग्र नरसिंह, ज्वाला नरसिंह, योगा नरसिंह। भगवान नरसिंहदेव ऐसे बैठे और प्रहलाद महाराज को योगा सिखा रहे हैं, ये नव नरसिंह मंदिर। तो प्रभुपाद जी से किसी भक्त ने पूछा, प्रभुपाद आप तो बोल रहे भगवान नरसिंह देव मुल्तान में प्रकट हुए, लेकिन यहाँ पर लोग बोलते हैं कि अहोबिलम में प्रकट हुए। तो कहाँ पर प्रकट हुए आप बताइए। प्रभुपाद जी मुस्कुरा कर बोले, इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो बाहेर नरसिंहो हृदय। नरसिंहदेव कैन अपियर फ्रॉम एनी वेयर, भगवान नरसिंहदेव कहीं से प्रकट हो सकते। अल्टीमेटली भगवान नरसिंहदेव हमारे हृदय में है और वही हमारे सारे अनर्थों को दूर कर सकते हैं। अलग अलग युग में अलग अलग कल्प भेद से भगवान अलग अलग स्थान में प्रकट होते हैं। तो हो सकता है किसी एक कल्प में वो मुल्तान में प्रकट हो, दूसरे कल्प में वो अहोबिलम में प्रकट हो। तो जब हिरण्यकश्यप ने बेटे प्रहलाद को ज्ञान प्राप्त करने के लिए पाठशाला में भेजा, भौतिक ज्ञान शंड और अमरक उनको भौतिक विषय सिखा रहे थे, तब एक दिन प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप उनको अपनी गोद में लेकर पूछने लगे, प्रहलाद आपने जो पाठशाला में सीखा है उसमें सबसे अच्छी चीज क्या है वो आप मुझे सुनाइए। सबसे ज्ञानवान जो नॉलेजेबल जानने लायक चीज है वो आप हमें सुनाइए। तो प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को बताने लगे, तत्साधु मन्ने सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न यायम असद्गृह हित्वा तपातम गृहमंदकूपम वनम गतो यद हरिम आश्रयेत। प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को बोल रहे हैं, असुर वर्य ओ बेस्ट अमंग द डीमंस, हे राक्षसों में सर्वश्रेष्ठ। वो बोल रहे हैं कि जहां तक मैंने अपने गुरु से सीखा है, जो कोई व्यक्ति जिसने ये क्षणिक गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है वो चिंताग्रस्त रहते हैं, वो भौतिक आवश्यकताओं को पूरी करने में समय बिताते हैं, वो ऐसे अंधे कुएं में गिर गए हैं जहां पर कोई पानी नहीं है। मनुष्य को स्थिति से निकलना चाहिए और जंगल में चले जाना चाहिए, वृंदावन चले जाना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको सब जगह छोड़कर कृष्ण भावनामृत का पालन करने के लिए वृंदावन जाना चाहिए। हरे कृष्ण। अभी आपको कोई बोले वृंदावन जाना चाहिए, आप कितने खुश हैं, आप ऑलरेडी वृंदावन में हो, अब वृंदावन में रहना ही चाहते। लेकिन हिरण्यकश्यप को बहुत बुरा लगा कि क्या बकवास कर रहे हैं, मुझे वृंदावन जाने के लिए बोल रहे हैं, मुझे मेरे शत्रु विष्णु की भक्ति करने के लिए बोल रहे हैं, ये कौन है, किसने मेरे बेटे को बिगाड़ दिया है, किसने उसको साधु संघ में लगा दिया है ना, असत संग। उनको लगता था कि ये वैष्णव का संघ असत संघ है। तो बड़े क्रोधित हो गए और अपने टीचर्स को आदेश दिया कि आप इसको अच्छी तरीके से शिक्षा प्रदान करो, बड़े संभाल के, ऐसा नहीं कहो कि वो कहीं भक्तों के संग में आ जाए, आप इसको अच्छी बुद्धि दो, मतलब पॉलिटिक्स राजनीति ये सब चीज़ें सिखाओ। तो प्रहलाद महाराज को अपने पास लेकर गए और पूछे, प्रहलाद तुमको किसने सिखाया, तुम्हारी बुद्धि कैसे बिगड़ गई। तो प्रहलाद महाराज ने बताया कि वास्तव में मैं भगवान को नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया से मनुष्य सोचता है कि मैं मेरा मित्र है ये मेरा शत्रु है, और इस तरह वो भ्रम में फंसा रहता है। तो प्रहलाद के टीचर्स ने उसको फिर से समझाने का प्रयास किया और उसको डराया धमकाया कि तुम इस तरह की चीज़ें की बातचीत मत करो, ये विष्णु हमारे शत्रु हैं, इसको भूल जाओ। और बहुत तरीके से उसको, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेन वॉश करने के लिए, यानी उसके सब जो विचारों को बदलने का प्रयास किया गया। और फिर कुछ दिनों के बाद फिर से उनको स्नान करा के बड़े प्रेम से पिताजी के पास भेजा गया। पिताजी ने फिर से पूछा, प्रहलाद आपने पाठशाला में जो सीखा है उसमें सबसे अच्छा क्या है वो बताओ। इधर प्रहलाद महाराज ने शुरू किया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। ने बताया कि नवविद्या भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए, इस प्रकार के नवविद्या भक्ति का पालन करने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं स्पेशली श्रवणम कीर्तनम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दो दिन पहले रुक्मिणी द्वादशी थी, हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे रुक्मिणी जो बाद में भगवान से विवाह करते हैं, उन्होंने भगवान के दर्शन भी नहीं किए थे, उन्होंने भगवान को देखा भी नहीं था, लेकिन उनको इतनी उत्कंठा थी भगवान को प्राप्त करने के लिए कि उन्होंने एक ब्राह्मण को संदेश भेजा कि कृष्ण जल्दी से आओ, मुझे यहां से ले जाओ, कहीं ऐसा नहीं हो कि शेर का शिकार गीदड़ ले जाए, मुझे शिशुपाल से बचाओ। कैसे रुक्मिणी के अंदर ये प्रेम भावना जागृत हुई, अफकोर्स हम ये भी जानते हैं वो तो भगवान की नित्य शक्ति है, लेकिन फिर भी बाह्य रूप से रुक्मिणी ने भगवान की महिमा का श्रवण किया था। तो प्रभुपाद यहां लिखते हैं कि ये नवविद्या भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण चीज है श्रवण और कीर्तन। हम कथा सुनते हैं गदाधर पंडित और चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो गदाधर पंडित के पास जाते थे और भागवत श्रवण करते थे। वही कथा बार बार, स्पेशली प्रहलाद महाराज की कथा। अभी मैं ये कथा बता रहा हूं तो आपको लग रहा होगा प्रभु जी ये कथा तो हमने कई बार सुनी है, कोई नया बताओ, चटपटा बताओ। लेकिन हम देखते हैं कि प्रहलाद की कथा, ध्रुव महाराज की कथा, नारद मुनि गदाधर पंडित बार बार सुना रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु भी सुन रहे हैं। जब हम भक्ति में शुद्ध हो जाते हैं तो वही कथा बार बार सुनने से नए नए रसों का आस्वादन होता है। श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। तो गदाधर पंडित की कथा चैतन्य महाप्रभु सुनते थे। ऐसे यहाँ पर पास में वो जगह है जहाँ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। व्हाट इज दैट प्लेस कॉल्ड यहाँ पास में? भद्रोन। ये जो यहाँ पर अक्रूर घाट के पास में है, तो ब्राह्मण के पत्नियां जो हैं वो भगवान की सेवा के लिए इतने उत्सुक होते हैं। और ब्राह्मण जब कृष्ण के मित्र मांगने जाते हैं उनसे तो बोलते हैं नहीं नहीं हम बहुत बिजी हैं, यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञपति यहाँ पर हैं, सारे यज्ञों के भोक्ता कृष्ण हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपस्या। लेकिन वो ब्राह्मण नहीं पहचान पाते कि ब्राह्मण के पत्नी जैसे ही कृष्ण बलराम का नाम सुनते हैं तो दौड़ते हुए आते हैं, कृष्ण बलराम। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की कथाओं का श्रवण किया था। तो श्रवण का यह महात्म्य है। मुझे याद आ रहा है जब प्रभुपाद जी बंबई में थे आज से करीब 41 साल पहले, तो एक बार प्रभुपाद जी हिंदी में लेक्चर दे रहे थे और एक भक्त जो विदेश से थे वो उठ के जाने लगे क्योंकि उनको लगा कि अब ये तो अंग्रेजी में, वो हिंदी नहीं जानते थे। तो प्रभुपाद जी ने पूछा आप क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ऐसे मुझे हिंदी समझ में नहीं आती। तो प्रभुपाद जी बोले आपको समझ में आए या नहीं आए फिर भी ये दिव्य ध्वनि हृदय को परिवर्तित करने वाली, जो कृष्ण भावना का संदेश है वो इस पर भी निर्भर नहीं है कि हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ऑफकोर्स समझ में आए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर हम सुन रहे हैं नम्रतापूर्वक तो हृदय का परिवर्तन हो रहा है। और दूसरी चीज़ जो प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं श्रवणम कीर्तनम में, कीर्तन के बारे में प्रभुपाद जी बोलते हैं कीर्तन का मतलब है एक तो है कि भगवान की कथा बोलना और दूसरा है भगवान का नाम लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रभुपाद जी सुंदर तात्पर्य में, बहुत लंबा तात्पर्य है करीब 5-6 पेज का, और प्रभुपाद इस तात्पर्य में बताते हैं 10 नाम अपराध क्या हैं और कैसे इनसे बचना है। और ये सब वर्णन करने के बाद में अंत में प्रभुपाद जी बोलते हैं इन अपराधों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हालांकि हम अपराध नहीं करना चाहते, कई बार न जानते हुए न चाहते हुए अपराध हो जाते हैं। तो कैसे अपराधों से मुक्ति हो सकती है? प्रभुपाद जी बोलते हैं एक ही तरीका है, अगर हम 24 घंटे भगवान का नाम लेते हैं तो अपने आप सारे अपराधों से मुक्त हो जाते हैं और फिर शुद्ध नाम अपने आप प्रकट हो जाता है। और नाम कौमुदी पुस्तक में बताया गया है कि अगर कोई किसी वैष्णव के चरण कमल में अपराध करता है तो उसको वैष्णव के पास जाकर माफी मांगनी चाहिए। ऐसे अगर हम भगवान के नाम के प्रति अपराध कर रहे हैं तो भगवान के नाम से ही माफी मांगनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैंने नाम जब किया है, मैंने पूरा तो कर लिया है 16 माला, लेकिन इससे बहुत सारे अपराध हैं। मैंने खीर भोग बनाया आपके लिए लेकिन हरि नाम की खीर में बहुत सारे मिट्टी पड़ गई है, बहुत सारे अपराध हो गए हैं और ध्यान नहीं लगना, इन अटेंशन, बहुत सारी तकलीफें हो गई हैं। भगवान उन सब अपराधों को दूर करके हरि नाम की सेवा को स्वीकार करें। जिस तरह प्रहलाद महाराज भक्ति के सब नौ अंगों का वर्णन करते हैं और इस पर उनके पिताजी और भी क्रोधित हो जाते हैं और वो निश्चय करते हैं कि इनको मार देना चाहिए। वो बोलते हैं कि कभी कभी हम देखते हैं कि शरीर के किसी अंग में कुछ रोग हो जाता है और वो रोग के कारण उस अंग को काटना जरूरी होता है। हालांकि वो अंग शरीर का ही भाग है, लेकिन अगर वो शरीर में वो अंग रखा जाए तो पूरे शरीर को नष्ट कर देगा। ऐसे प्रहलाद मेरे ही शरीर से उत्पन्न हुआ है, लेकिन ये हमारे वंश का विरोधी है, तो इसको मारना जरूरी है। और इसको मारने का बहुत प्रयास किए जाते हैं, उनको सांपों के बीच डाला जाता है। मेरे को याद आ रहा है, जब हम एक बार बेलगाम में थे तो एक बार हम कीर्तन कर रहे थे एक भक्त के घर में, और उसी घर में एक बालकनी सी थी, और किसी भक्त ने मजाक में एक कीर्तन के बीच में एक प्लास्टिक का सांप डाला और सब लोग भाग गए, निताई गौर प्रेमानंदे। इतना पूर्ण विश्वास था भगवान भी रक्षा करे, क्योंकि हमारा विश्वास उतना नहीं है। क्योंकि प्रहलाद के लिए प्लास्टिक ने एक्चुअल सांप थे जो आवाज कर रहे थे, और लेकिन प्रहलाद महाराज मन में यही सोच रहे थे, कृष्ण राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राखे। प्रभुपाद जी एक परपोट में बताते हैं कि प्रहलाद महाराज से क्या सीखना है कि कैसे भगवान में विश्वास बनाए रखना है हर स्थिति में, और उनका स्मरण करना। ये श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, जो स्मरणम जो आइटम है उसके सबसे अच्छे उदाहरण प्रहलाद महाराज। इनफैक्ट एक तात्पर्य में मध्वाचार्य बताते हैं स्कंद पुराण से कि सारे जो वैष्णव हैं, 12 महाजन हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ प्रहलाद को बताया गया उनके स्मरण के कारण, उनकी गहराई भक्ति की गहराई के कारण। हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी के अवतार हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी बताया जाता है कि हरिदास ठाकुर में ब्रह्मा जी और प्रहलाद महाराज दोनों का आविर्भाव हुआ है। इसीलिए वास्तव में आज के दिन नरसिंह भगवान का गुणगान करने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रहलाद का गुणगान करना। जैसे अगर पिता और पुत्र हैं, आप अगर पिता का गुणगान करते हो कि पिताजी ने इतना कुछ हासिल किया, इतने अच्छे पद प्राप्त किए, तो पिताजी खुश होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आप उनके पुत्र का गुणगान करते हो तो और भी ज़्यादा खुश होंगे। ऐसी भगवान नरसिंह देव के आविर्भाव दिवस पर अब हम थोड़ी देर के लिए प्रहलाद के गुणों की चर्चा करेंगे, प्रहलाद कैसे भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। तो अनेक रूप से प्रहलाद को मारने का प्रयास किया जाता है। आंध्र प्रदेश में एक स्थान है विशाखापट्टनम, जहां पर भगवान नरसिंह देव का एक बहुत स्पेशल मंदिर है, इसको सिंहाचलम बोलते हैं। आप में से किसी भक्त ने दर्शन किए हैं सिंहाचलम? ये जो विग्रह है बहुत स्पेशल है, आपको मालूम है कौन सा डीटी है उसके अंदर? नरसिंहदेव और साथ साथ वराहदेव, उसको बोलते हैं जियाड़ नरसिंह, दोनों एक साथ हैं, नरसिंह भगवान और वराह भगवान। इनफैक्ट यहां पर भगवान को इतना क्रोध है कि ये विग्रह इतने ज्वलंत है कि अगर इसको चंदन नहीं लगाया जाए तो पूरे सारे आसपास के सारे पुजारी भी जलकर भस्म हो जाएंगे, और साल में एक दिन वो चंदन निकाला जाता है और वो दिन है अक्षय तृतीया। तो ये जो विग्रह है इसको बोलते हैं जियाड़ नरसिंह। इसकी कहानी ऐसी कि यहीं पर हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे को समुद्र के पर्वत के ऊपर से नीचे फेंका था समुद्र के अंदर, और प्रहलाद पूर्ण रूप से भगवान पर अवलंबित थे। मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हार, नित्य दास प्रति तुवा अधिकार। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करना चाहो तो रक्षा करो, और अगर आप मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, मुझे कोई डर नहीं है, हर स्थिति में मैं आपको स्मरण करना चाहता हूं। तो भगवान प्रकट होते उनकी रक्षा करने के लिए। और एक कथा बताई जाती है पुराणों में कि प्रहलाद को जलाने का प्रयास करते हैं, क्या होलिका यस, जो प्रहलाद के पिता की बहन होती है ना, होलिका को वरदान मिला होता है कि वो अग्नि से नहीं जलाई जाएगी, अग्नि उसको स्पर्श भी नहीं कर सकती। पता नहीं असुरों को कहां कहां से वरदान मिलते हैं, लेकिन भगवान सारे वरदानों को पूरा करके उनका नाश भी कर देते हैं, क्योंकि सब पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम भगवान के हाथ में है। वही सब कंट्रोल कर रहे हैं। तो होलिका वो सोचते कि मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेके बैठूंगी और आग जलाई जाए जिससे प्रहलाद की मृत्यु हो जाए, और ऐसा ही करने का प्रयास करते हैं, चारों ओर आग लगाई दी जाती है, लेकिन होता क्या है, प्रहलाद बच जाते हैं और होलिका जल जाती है। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण होलिका के। होलिका अपने आप को भी नहीं बचा सके, अब उसके पिताजी और भी गुस्से होने लगे, उसको मारने का प्रयास, एक पागल हाथी के सामने फेंक दिया। अब प्रहलाद महाराज बस भगवान को याद कर रहे। अब जानते हैं जब हाथी जंगल भी, मैं कुछ दिनों पहले हरिद्वार में गया था, हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में एक इलाका है जहाँ पर जंगल है बहुत, और वहाँ पर रोड है, लेकिन शाम को 5 बजे के बाद रोड को भी बंद कर देते हैं क्योंकि हाथी गुजरते हैं, और जब हाथी क्रोधित होता है तो कुछ भी कर लेते हैं, और पागल हाथी। लेकिन प्रहलाद महाराज पूर्ण रूप से भगवान पर अवलंबित। हमारे जीवन में जो भी कठिनाई आती है, दुख आते हैं, विपत्ति आती हैं, आप तुलना करिए प्रहलाद की तुलना में कुछ भी नहीं है। हम दुखी होते हैं कि किसी ने मेरा प्रसाद प्लेट का गुलाब जामुन उठा दिया, हम दुखी होते हैं कि मैंने एक धोती सुखाने के लिए डाली थी, दूसरे कोई भक्त पहन के चले गए, है ना। हम दुखी होते हैं कि किसी ने कुछ कड़वा बोल दिया मुझे, लेकिन आप सोचिए हमारे साथ ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि किसी ने प्रसाद में जहर दे दिया हो, होगा भी नहीं आशा है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि हमको कोई बिल्डिंग के ऊपर से फेंक दिया गया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमको सांपों के बीच डाला गया। तो हमारी परीक्षाएं कितने हैं तो प्रहलाद की तुलना में। हमें प्रहलाद से प्रेरणा लेनी चाहिए कि मुझे, जब प्रहलाद ने इतने कष्ट सहन किए, जो इतने महाभागवत भक्त हैं, तो मैं तो लिटिल भागवत हूँ, मैं भागवत भी नहीं हूँ, मैं तो भागवत बनने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रभुपाद भी अपने बारे में बोलते थे, किसी ने पूछा आप महान भक्त हैं, प्रभुपाद जी बोले नो आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी अ डिवोटी। प्रभुपाद कभी अपने आप को भक्त कहते नहीं। तो हम बहुत तुच्छ जीवन, जो भी कठिनाई आ रही है प्रहलाद की लीला को याद करना कि प्रहलाद कितने सहनशील, सहनशीलता ये एक वैष्णव का गुण है। और ये सब होने के बाद में हम लास्ट में आज प्रहलाद की प्रार्थनाएं पढ़ेंगे, और प्रहलाद अपने पिताजी के लिए प्रार्थना करते हैं। वो व्यक्ति जिन्होंने जहर दिया, समुद्र के ऊपर फेंका, हाथी के सामने कुचलने का प्रयास किया, अग्नि में जलाने का प्रयास किया, प्रहलाद उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनको माफ कर दो। ये वैष्णव की महानता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं वन कैन नो द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन बाय हिज एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशन। हम जान सकते हैं कि कोई कितना बड़ा वैष्णव है कि कितना वो सहनशील है। तो प्रहलाद के अंदर ये गुण था, समदर्शी। और अपने मित्रों को भी, जब भी उनको पाठशाला में समय मिलता, अपने मित्रों को दिव्य ज्ञान के बारे में उपदेश करते। उनके मित्रों को संशय हुआ, बोले प्रहलाद आप तो हमारे साथ ही पढ़ाई कर रहे हो, हम शुरू से केजी में साथ में रहे हैं और हम सेम टीचर के क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, फिर आपको इतना दिव्य ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तो प्रहलाद ने समझाया उनको कि जब मैं माँ के गर्भ में था तभी मैंने भागवत अटेंड किया था, हरे कृष्ण। तो गर्भ में बैठ कर भी कोई व्यक्ति सुन सकता है, और भागवत क्लास में बैठ के भी कोई व्यक्ति सो सकता है। दोनों ऑप्शंस होते हैं, है ना। वी आर द चॉइस। तो इस तरह से प्रहलाद को अलग अलग रूप से मारने के लिए प्रयास किया जाता है, और अंत में जब उनके पिताजी विफल हो जाते हैं तो बहुत ही दुखी होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि प्रहलाद ये कहां से तुमको इतनी शक्ति मिल रही है, कौन तुम्हें रक्षा कर रहे हैं। प्रहलाद बिल्कुल मुस्कुराते बोलते हैं कि जो व्यक्ति आपको शक्ति दे रहे हैं वो मुझे भी शक्ति दे रहे हैं, सब शक्ति के स्तोत्र एक ही हैं। इनफैक्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं बताना भूल गया, प्रहलाद महाराज अपने टीचर्स को ही उपदेश करते हैं। एक बार उनके टीचर पूछते हैं कि हमने तो उपदेश नहीं दिया, हिरण्यकश्यप बोलते हैं हमने इसको कोई गलत नहीं सिखाया, पता नहीं किसने इसको सिखाया। तो हिरण्यकश्यप पूछते हैं कि धूर्त तुमको कहां से ज्ञान प्राप्त हुआ। तो प्रहलाद महाराज ये 3 श्लोक बोलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम सबके लिए भी लाभदायक है। मतिर्न कृष्ण परतो स्वतो वा मिथो विपद्यते गृह वृतानाम अदांत गोभीर विशतम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वनानाम। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं अपने असंयमित इंद्रियों के कारण जो भौतिकवादी जीवन के प्रति आसक्त रहते हैं वे नरक की तरफ प्रस्थान करते हैं और वे चबाए हुए को चबा रहे हैं। ऐसे लोगों का कृष्ण के प्रति झुकाव दूसरों के उपदेश से भी नहीं होता न अपने निजी प्रयास से होता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कैसे भौतिक जीवन चबाए हुए को चबाना है। से मान लो किसी ने कोई चीज़ को चबाया हो, चूस लिया हो, सारा रस निकाल लियो, उसको फेंक दिया गया, गन्ने का जो जूस निकालने के बाद फेंक दिया गया और कोई दूसरा व्यक्ति आके उसको चूसे तो उसमें क्या लाभ है। इसी भौतिक जीवन का सुख इसी प्रकार से है कि इसमें कोई रस है नहीं, हमारे पूर्वजों ने भी प्रयास किया है और उसका कुछ रस है नहीं, लेकिन फिर भी हम चबाए हुए को चबा रहे हैं। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि अगर किसी के माता पिता या दादा भक्त नहीं हैं तो ये बात बताते नहीं है किसी को कि इसमें कुछ रस नहीं है, बोलते आप भी चबाने का प्रयास करो। यही भौतिक जीवन है, चूइंग द च्यूड, बार बार प्रयास करना और अंत में विफल रहना। एक बार मुझे याद आया प्रभुपाद जी बम्बई में थे और समुद्र के किनारे जा रहे थे जुहू से, और एक व्यक्ति जो मछली पकड़ रहा था उसको लगा ये कोई साधु संत है, कुछ तो देना चाहिए, तो उन्होंने एक मछली प्रभुपाद के सामने रखी। बोले प्रभुपाद, प्रभुपाद जी हंस के बोले यू एंजॉय, आप आनंद लो, और थोड़ा आगे जाने के बाद बोले एंड देन सफर, और फिर बाद में दुखी। ये मटेरियल लाइफ का ये गुण है कि जितना भी आप भोग करते हो उतना ही फिर दुखी होना पड़ता है। इसलिए प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को बोलते हैं कि ये दुनिया में सुख और दुख दोनों अपने आप ही आ जाते हैं, इसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। वे कहते हैं कि जैसे बिना प्रयास के दुख आते हैं, नहीं हमारे में से कोई ऐसे निवेदन नहीं करते हॉस्पिटल में मुझे 15 दिन के लिए मलेरिया चाहिए, नहीं मुझे 1 महीने के लिए कैंसर दे दो, अप्लाई नहीं करना पड़ता, अपने आप आ जाते। ऐसे सुख भी अपने आप आ जाते। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सुखी होना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, सुखी होने का प्रयास ही छोड़ देना चाहिए, तब फिर वो सुखी हो सकता है। फिर वो आगे अपने पिताजी को बताते हैं, नते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशय ये बहिरर्थमानी अंधा यथंधेर उपनीयमानस्ते पिष्टंत्रम उरुदाम निबद्ध। नते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु, भौतिक जीवन में जो फंसे हुए हैं वो जानते नहीं है कि मेरा असली स्वार्थ भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की भक्ति करना है, और उनकी तुलना की गई है कि अंध यथंध उपनीय माना, एक अंधा व्यक्ति रास्ता दिखा रहा है उसके पीछे कई अंधे व्यक्ति जा रहे हैं और सब एक साथ गड्ढे में गिर रहे हैं। तो यही आजकल भौतिक जीवन की स्थिति है, क्योंकि आज के तथाकथित लीडर्स, जो पॉलिटिशियन साइंटिस्ट जो देश को समाज को मार्ग दिखा रहे हैं, उनको स्वयं को पता नहीं है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, वो स्वयं दुखी हैं। इसलिए आजकल देखते हैं कितनी सारी मानसिक बीमारियाँ बढ़ गई। ऐसा जो बड़े बड़े जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि अभी जो 21वीं सदी चल रही है इसमें सबसे बड़ी बीमारी मानसिक बीमारी है, क्योंकि लोग चिंता में रहते हैं, दुख में रहते हैं। तो प्रहलाद महाराज यहाँ बोल रहे हैं कि लीडर्स अंधे हैं, उनको पता नहीं है कहाँ जाना है, और जो अनुयायी है वो अंधे लीडर को फॉलो करके वो भी गड्ढे में गिर जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी की तीव्र इच्छा थी कि हम सब भक्त जो कृष्ण भावनामृत में आए हैं अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कृष्ण भावना का प्रचार करें। भारत भूमि दिहले मनुष्य जन्म जार जन्म सार्थक करी पूर्ण, क्योंकि समाज को बहुत आवश्यकता है सही दिशा दिखाने के लिए, तमसोमा ज्योतिर्गमा, सबको कृष्ण की तरफ ले जाने। कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्वयं भी शुद्ध नहीं हैं, फिर भी गुरु की आज्ञा के अनुसार हम प्रयास कर सकते हैं कि हम कृष्ण भक्ति का संदेश सुनाएं। कल मैं हरीश्वरी प्रभु की एक डायरी पढ़ रहा था, 1975 में प्रभुपाद वृंदावन में जब थे, और प्रभुपाद इसी सातवें स्कंद पे प्रवचन कर रहे थे, और प्रभुपाद जी प्रवचन में बता रहे थे कि हमें भगवान का नाम प्रचार करना है, उसके लिए बड़े प्रचारक होने की जरूरत नहीं है, जितना भी आता है जो हमने सुना है गुरु से वो हम दोहरा सकते हैं। જ્યારે દેખે તારક કૃષ્ણ ઉપદેશ અમારા આજ્ઞા ગુરુ હૈયા તાર દેશ. શ્રી પ્રભુપાદ બહુ ઉદાર થે કે હર પ્રકાર કે ભક્ત કો ભગવાન કી સેવા મે લગા દે. અગલે શ્લોક મે પ્રહલાદ મહારાજ ઓર ભી ઊંચા સંદેશ બતા રહે. નૈશ્યમ મતિસ્તાત ઉરુ ક્રમાંગીમ સ્પર્શસ્ય નાર્થ પગમો યદર્થ મહીયશમ પાદ રજોભિષેકમ નિષ્કિંચિનાનામ ન વિરણીત યાવત. બતા રહે હૈ કે ભૌતિકવાદી વ્યક્તિ ભક્ત કૈસે બન સકતા હૈ? વો તબ તક નહીં બન સકતા જબ તક ઉસકો ભગવાન કે શુદ્ધ ભક્તો કે ચરણો કી ધૂળ નહીં મિલે. મહાત્માઓ કી રજ સે અભિષેક કરના તબ ઉસકો કૃષ્ણ કે ચરણો મે પ્રેમ મિલ સકે. અબ ઇસકા મતલબ ક્યા હૈ? કોઈ મહાત્મા હૈ, કોઈ સાધુ હૈ, સંન્યાસી હૈ, વો આયે ઉનકે આપ ચરણ પકડ લે. પ્રભુજી મુજે જાના હૈ. નહીં નહીં નહીં, ભાગવત મે લિખા હૈ આપકે ચરણ પકડને હૈ, યે ના તમે ચલના મુશ્કિલ હો જાય. ઉસકા મહાત્માઓ કે ચરણો કી ધૂળ લેને કા મતલબ હૈ ઉનકી આજ્ઞા કે અનુસાર જીવન બિતાના. ઓર શ્રીલ પ્રભુપાદજી કે સારે શિષ્યો કી યહી આજ્ઞા હૈ કે હમ હમેશા ધ્યાનપૂર્વક ભગવાન કા નામ લે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. પ્રહલાદ મહારાજ ઇસ તરહ અપને પિતાજી કો ઉપદેશ કરતે હૈ બહોત તરીકે સે, લેકિન ફિર ભી વો સુનને ગુસ્સે હો જાતે, ઉસકો ઉઠા કે પટક દેતે હૈ, બોલતે હૈ ઉસકો લે જાઓ, ઇસકો મારને કા ફિર સે પ્રયાસ કરો. ઓર અંત મે જબ નહીં માર પાતે તબ વો પૂછતે હૈ ઉનસે કે કહાં પર હૈ તુમ્હારે ભગવાન? તુમ કહે રહે હો એક વ્યક્તિ જે સબ જગહ પર હૈ, ક્યા એ ખંભે મે હૈ? પ્રહલાદ પૂરા વિશ્વાસ થા કે ભગવાન અંડાંતરસ્ત પરમાણુ ચયંતરસ્તમ. હિરણ્ય યસ ભગવાન ખંભે મે હૈ. ઓર હિરણ્ય કશ્યપ ને બહોત ક્રોધ સે આક્રમણ કિયા ઓર ઉસમે સે ભગવાન કા વો દિવ્ય રૂપ પ્રકટ હુઆ. નરસિંહદેવ ભગવાન કી જય. અરે રૂપ કો દેખ કર હિરણ્ય કશ્યપ પહેલે તો ઘબરા ગયે, ફિર સોચને લગા અરે યે તો વોહી વ્યક્તિ લગ રહે, શાયદ યે વિષ્ણુ હૈ, યે વોહી હૈ જો મેરે ભાઈ કી હત્યારે હૈ, મેં ઇસકા બદલા લૂંગા. લેકિન મન હી મન ઉસકો પતા ભી થા કે ભગવાન મેરે વધ કા કારણ બનને વાલે. અબ યે દેખિયે પ્રહલાદ ઓર હિરણ્યકશ્યપ દોનો ઉસી ભગવાન કા દર્શન કરતે, લેકિન ફરક ક્યા હૈ? ભાવના મે ફરક હૈ. હિરણ્યકશ્યપ ભગવાન સે લડના ચાહતે હૈ ઓર અંત મે ઉનકા નાશ હો જાતા હૈ. ઓર પ્રહલાદ મહારાજ બોલતે હૈ નરસિંહામદિમ શરણમ પ્રપદ્યે. તો ભગવાન નરસિંહદેવ થોડી દેર તક હિરણ્યકશ્યપ કે સાથ ખેલતે રહેતે, જિસસે કિ ભાગવત મે ઓર થોડા એક્સાઇટિંગ કથા હો. ભગવાન ચાહતે તો બસ પકડ કે ટિક 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 એક સેકન્ડ મે માર સકતે, ઉનકે હાર્ટ મે ઉસકા આર્ટરી બ્લોક કર દેતે ઓર હિરણ્યકશ્યપ કી રાત કે રાત મૃત્યુ હો જાતી. એક બાર હુઆ એસે, એક બાર જબ બમ્બઈ મે એક વ્યક્તિ થે જહાં પર અભી હરે કૃષ્ણ લેન્ડ મંદિર હૈ, જે વહાં કે માલિક થે, વો ધોખા દે રહે થે બહોત લોગોં કો. આ પ્રભુપાજી કો ભી ધોખા દેને કા પ્રયાસ કર રહે થે, યાની આજ કી ભાષા મે વો 420 થે, લેકિન પ્રભુપાદ 840. પ્રભુપાદ જ્યાદા એક્સપર્ટ થે, વો બહોત ટીચ. જે પ્રભુપાજી જાનતે થે કે ધોખેબાજ કે સાથ કૈસે ખેલના હૈ, ઓર વો લેન્ડ બેચને કે બાદ ભી દેને કો તૈયાર નહીં થે. ઓર અંત મે પ્રભુપાદ થોડે ગુસ્સે હુએ, સમજાને કા પ્રયાસ ક્યા, દેખો યા તો તુમ પૈસા વાપસ દે દો યા લેન્ડ દે દો. લેકિન જબ નહીં દે રહે થે, પ્રભુપાદ બોલે ઠીક હૈ. ફિર ઉસ ગયે રાત મે ઓર ઉસી રાત કો ઉસકી મૃત્યુ હો ગઈ. ઓર પ્રભુપાજી બોલે નરસિંહ ભગવાન આયે ઉસકો મારને કે લિયે. તો એસા મત સોચે ખાલી હિરણ્યકશ્યપ સત્યયુગ મે થે, આજકલ મોડર્ન વર્ઝન્સ ભી ઘૂમ રહે હૈ, ભગવાન ઉનકા ભી વધ કરને કે લિયે તૈયાર હૈ. તો હિરણ્યકશ્યપ થોડી દેર તક ખેલતે રહે. પ્રભુપાજી બોલતે એસે સાંપ ચૂહે કો પકડતા હૈ ફિર છોડ દેતા હૈ, એસે ભગવાન નરસિંહ થોડી દેર પકડતે ફિર છોડતે. ઓર અંત મે ભગવાને દેખા સૂર્યાસ્ત કા સમય આ રહે, ભગવાન ને નિશ્ચય કિયા ઉસકા વધ કરને કા. ઉસકો વરદાન મિલા થા, ઉસકી મૃત્યુ અંદર નહીં હોગી, બહાર નહીં હોગી, અસ્ત્ર સે નહીં હોગી, શસ્ત્ર સે નહીં હોગી, ઓર ક્યા થા, ઉપર નહીં, નીચે નહીં, કૃષ્ણ હોલ મે નહીં, બલરામ હોલ મે નહીં, સબ કહીં પર ભી નહીં હોગી. એસે કઈ સારે કન્ડિશન્સ બના રખે થે, લેકિન ભગવાન ઇતને એક્સપર્ટ હૈ કે સારે કન્ડિશન્સ ફુલફિલ, ક્યોંકિ સબ જો વરદાન માંગને કી બુદ્ધિ ભી ભગવાન ને દી. તો ભગવાન જાનતે હૈ કૈસે વરદાન દેના હૈ ઓર કૈસે ઉસકો વરદાન દેતે હુએ મારના હૈ. ભગવાન બહોત, પ્રભુપાજી બોલતે ઇફ યુ ટ્રાય ટુ ચીટ ગોડ હી ઇઝ અ ગ્રેટેસ્ટ ચીટર. સબસે બડે ધોખેબાજ ભી ભગવાન હૈ, સબ કુછ છીન લેતે હૈ, મૃત્યુ સર્વ હરાશ્ચ. તો ભગવાન ઉનકો અપની ગોદ મે લિયા ઓર अंदर भी नहीं, बाहर भी नहीं, दरवाजे के पास, और रात भी नहीं, दिन भी नहीं, और न तो वो मानव है, न वो सिंह है, नरसिंह अपने नाखूनों से वध किया। नाखून को जीवित भी माना जा सकता है और मृत भी माना जा सकता है। भगवान ने बड़े प्रेम के साथ, क्रोध के साथ, क्रोध भरे प्रेम के साथ, ये भी भगवान का प्रेम है, भगवान ने उनकी अंतड़ियों को निकाल दिया, उसका वध कर दिया। श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। और उसकी अंतड़ियों को निकाल के अपने गले में डाल दिया, और अभी भी भगवान का क्रोध खत्म नहीं हुआ। कई सारे सैनिक आ रहे थे, भगवान अपने हाथों से उनका वध करे। इंटरेस्टिंग है कि हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भगवान के हाथ में जो नाखून में सब खून लगा था, उसको धोने के लिए भगवान कहाँ गए? मायापुर, नरसिंहपल्ली के पास। कह रहे प्रभु जी, भगवान ने उसका वध किया आंध्र प्रदेश में, और हाथ धोने वेस्ट बंगाल गए, 1500 किलोमीटर। इतना दूर क्यों? ये भगवान के लिए क्या? भगवान जब भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए, उनके पैर धरती पे थे और उनके बाल जो है बादलों को स्पर्श कर रहे, इतनी उनकी हाइट थी। उनके लिए यहाँ से वेस्ट बंगाल जाना उतना है जितना मेरे लिए यहाँ से लेकर ये स्पीकर तक जाना है। भगवान और भी लीला करना चाहते थे वहाँ पर, उन्होंने हाथ धोए और वो पूरा पानी लाल हो गया। इसको देवपल्ली बोलते हैं। इधर और एक असुर छिप के बैठा था, जिसका नाम था नंबुची। यस, किसने बताया? नंबुची। यस, ये फ्रॉम आंध्र प्रदेश। अच्छा, नंबुची। यस, ये आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास छिप के बैठा था, मंगलगिरी। इसने भी तपस्या की थी, इसलिए तपस्या करना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। असुर भी तपस्या करते हैं, लेकिन किस लिए तपस्या करते हैं? असुर तपस्या करते हैं इंद्रिय तृप्ति बढ़ाने के लिए। जैसे कई लोग हम देखते हैं बहुत भागते हैं, दौड़ते हैं, किस लिए? कि वेट कम हो और इंद्रिय तृप्ति ज्यादा करें, है ना। लेकिन भक्त तपस्या किस लिए करते हैं? यत करोषि यदश्नोषि यज्ञोषि तपसि यत तत् कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान बोलते हैं मेरे लिए तपस्या कर। गोपियां तपस्या करते हैं, देवी की पूजा करते हैं कात्यायनी की, लेकिन वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते। तो ये जो असुर था, इसका नाम था नंबुची, उसने ऐसे एक नीडल, ये पेन, पेन से भी पतला एक नीडल, उस नोक के ऊपर 1000 साल तक खड़े रहे हो। हरे कृष्ण, आप ट्राई मत करना, ये ना, इतनी भयानक तपस्या। और उन्हें क्या वरदान मांगा? जब ब्रह्मा जी आए, उन्होंने वरदान मांगा कि मुझे कोई भी गीला या सूखा अस्त्र नहीं मार सके। उनको लगा इसमें सब कुछ आ गया, गीला भी नहीं, सूखा भी नहीं, क्या बचेगा। और वो एक गुफा में छिपे हुए थे, मंगलगिरी, विजयवाड़ा से 8 किलोमीटर दूर। और जब वहां पर छिपे हुए थे, और भगवान नरसिंहदेव अहोबिलम में प्रकट हुए। एक्चुअली नाम अहोबिलम कैसे पड़ा? जब भगवान खंबे से प्रकट हुए तो इतना, इतनी आवाज, इतना बड़ा भयानक रूप, सारे देवता भी घबरा गए और जोर से बोले, अहोबलम अहोबलम, ये इतना बल कहां से आ गया, कौन है ये व्यक्ति? तो इसलिए उस जगह का नाम हो गया अहोबिलम। भगवान नरसिंहदेव एक्चुअली बहुत देर तक लड़ाई करते रहे, और बाद में हिरण्यकश्यप को मारने के बाद फिर मंगलगिरी गए, जो वहां से करीब 100-150 किलोमीटर है, मतलब भगवान के लिए आधा पैर का जो रास्ता हुआ, है ना। और वही असुर गुफा में छिपने लगा, भगवान उसके पीछे पीछे गए और इसका वध कर दिया। लेकिन भगवान ने वचन दिया था उसको, इसकी मृत्यु नहीं होगी गीले या सूखे अस्त्र से। तो कौन सा अस्त्र यूज किया? फोम, झाग, जो गीला भी नहीं है, सूखा भी नहीं है, और उसका वध कर दिया। श्री नरसिंहदेव भगवान की। लेकिन अब भगवान का क्रोध बढ़ा हुआ था। इसमें दो कहानियां हैं, एक तो देवताओं ने भगवान को शांत करने के लिए कुछ अमृत दिया। जैसे कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में होते हैं तो हम बोलते हैं थोड़ा ये लो नींबू पानी पी लो, या अगर बाहर के तो लिमका पी लो, यू नो, शरबत पी लो थोड़ा सा। तो भगवान को शांत करने के लिए अमृत दिया सतयुग में। अब वही भगवान नरसिंहदेव मंगलगिरी में अर्च विग्रह बन गए, वो सेल्फ स्वयंभू मूर्ति है सतयुग के समय की। आप में से किसी ने देखा है मंगलगिरी? आपने सभी देखे, सब नरसिंह क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में स्पेशली नरसिंह भगवान के बहुत सारे मंदिर है दक्षिण भारत में, और यहाँ पर उत्तर भारत में बद्रीनाथ के रास्ते पर भी जोशी मठ, वहां पर नरसिंह भगवान की मूर्ति है जिसकी पूजा शंकराचार्य जी करते थे। आपने देखा है किसी ने जोशी मठ में छोटे से विग्रह हैं, उनकी कलाई जो है बहुत पतली होती जा रही है, और जैसे टाइम बीतता जाएगा वो अप्रकट हो जाएंगे, तब फिर बताते हैं कि ये जो दो पर्वत है नर नारायण वो एक हो जाएंगे और भगवान बद्रीनाथ बद्री विशाल अप्रकट हो जाएंगे, ऐसे बताया गया कलयुग के एंड में से। तो ये नंबूची को मारने के बाद भगवान अर्च विग्रह बन गए उधर, उनको बोलते हैं पानक नरसिम्हा। तो भगवान को सत्युग में अमृत पिलाया जाता है, फिर सत्युग चला गया त्रेता युग आ गया, त्रेता युग में अमृत नहीं मिलता तो क्या अर्पण करते हैं, घी अर्पण करते हैं। अभी आप जानते हैं घी भी बहुत महंगा है, नहीं अगर आपको अच्छा घी चाहिए तो 1000 रुपये आधा किलो का है ना, अच्छे क्वालिटी का। तब घी भी द्वापर युग में घी भी नहीं मिल रहा तो भगवान को क्या अर्पण करने लगे, दूध, शुद्ध दूध। और कलयुग, कलयुग में दूध भी अच्छा दूध मिलना मुश्किल है, तब भगवान को क्या अर्पण करते हैं, पानक का, दैट इज गुड़, थोड़ा पानी में मिला के गुड़ और काली मिर्च, बहुत टेस्टी होता है। और भगवान का मंगलगिरी रूप है उसमें सिर्फ भगवान का मुख दिखाई पड़ता है, वो भी मुकुट से ढका हुआ है और मुकुट में एक छेद है और उसमें से गुड़ पानी अर्पण करते हैं भगवान को। जैसे आप एक एक गिलास ले जाओगे या एक बॉटल ले जाओ 1 लीटर की, तो भगवान आधा ग्रहण करते हैं और फिर गुड़ 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 ऐसे आवाज आती है और फिर बाकी आधा आप वापस लेके जा सकते। तो ये मंगलगिरी भगवान के विग्रह। इधर भगवान जब अहोबिलम में वापस आए तो यहाँ पर बहुत सारे देवता भगवान की स्तुति करने लगे, ब्रह्मा जी आए स्तुति करने के लिए, लेकिन भगवान शिव जी आए, रुद्र, चारण और किन्नर, लक्ष्मी देवी भी आई प्रार्थना करने के लिए, वो भी सोचने लगे अरे ये मेरे पति हैं, ऐसा अद्भुत रूप कभी नहीं देखा। तब सारे देवताओं ने प्रयास किया और भगवान का क्रोध कम नहीं हुआ। तब अंत में ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को बोला, प्रहलाद आप आगे जाओ, भगवान का अवतार आपके लिए हुआ है। और प्रहलाद जब पास में गए तब भगवान नरसिंहदेव ने अपने हाथों से स्पर्श किया प्रहलाद, और जैसे स्पर्श किया तो प्रहलाद के जो भी कुछ अगर भौतिक कलमश भी थे वो भी नष्ट हो गए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर हम भगवान के संपर्क में आते हैं तो हमारे सारे भौतिक गंदगी है दूर हो जाती। हम सब भगवान के संपर्क में आते हैं रोज, जब हम जिह्वा पर पवित्र नामों का कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हम ध्यान पूर्वक भगवान का नाम ले रहे हैं तो जो फल प्रहलाद को मिला जब भगवान नरसिंहदेव ने उनको स्पर्श किया, वही फल हमें मिल सकता है जब हम भगवान के नामों का जप या कीर्तन करते हैं। तब प्रहलाद स्तुति करने के लिए गए बहुत नम्रता पूर्वक। प्रहलाद भगवान को बोल रहे हैं, ब्रह्मा दया गण सुरयथ मुन्न सॉरी ब्रह्मा दया सुरगना मुनयत्व सिद्धा सत्वय कथा न गतता वचसा प्रवाहे नारादितो पुर गुणेर अधुना पिप्रु किम तोषितुम आरति हरे रुग्रज। प्रहलाद इतने नम्रता से बोल रहे हैं, जैसे अभी कोई सेवा है, ये भक्त ने प्रयास किया वो फेल हो गए, ये भी फेल हो गए, ये भी सब विफल हो गए, और मुझे बोला जाए कि आप करिए, तो हमें कितना गर्व होगा कि देखो ये सब फेल हो गए मैं करके दिखाता हूँ, हमें गर्व होता है अपने योग्यताओं का। लेकिन प्रहलाद कैसे शुरू कर रहे हैं, बोल रहे हैं ब्रह्मा दया सुरगुण, ये ब्रह्मा जी शिव जी ये सत्वगुण में जो भक्त हैं ये आपको प्रसन्न नहीं कर सके, तो मैं तो उग्र जात, मैं असुर परिवार में जन्मा हूं, मैं कैसे आपको प्रसन्न कर सकता हूं, मेरी कोई पात्रता नहीं है भगवान, मैं अयोग्य हूं। इसका तात्पर्य बहुत सुंदर है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक शुद्ध वैष्णव भगवान की प्रार्थना करते समय अपने आप एकदम तुच्छ मानते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने कौन सा किताब लिखा है, चैतन्य चरितामृत, वो बोलते हैं जगाई मदाई हैते मुई से पापिष्ट पुरुषे रकीट हैते मुई से लघिष्ट। मैं विष्टा में पड़े हुए कीड़े से ज्यादा गिरा हूं, मैं जगाई मदाई से भी पतित हूं। और प्रभुपाद ये लिखते हैं कि हमें कभी भी अपने वैष्णव योग्यताओं का अभिमान नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम बहुत नम्र हैं इस बात का हमें अभिमान हो जाता है कि मैं बहुत नम्र हूं, तो अभिमान होने से फिर नम्रता नष्ट हो जाती है। और प्रभुपाद जी यहां बताते हैं कि महाप्रभु का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण श्लोक त्रिनादपि सुनिछे न तरोरिव सहिष्णु न अमानी न मानदे न, और प्रभुपाद लिखते हैं पर्पर्ट में, अनलेस वन इज वेरी मीक एंड हम्बल टू मेक प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट. जब तक कोई नम्र नहीं बनता तब तक प्रगति करना बहुत मुश्किल. मैं शॉर्ट में बचे हुए प्रार्थना एक एक समरी में बताऊंगा. प्रहलाद महाराज बोलते हैं, भगवान किसी के पास बहुत सुंदरता है, बहुत पैसे हैं, बहुत योग्यता है, इससे आप खुश नहीं होते, आप खुश होते हो भक्ति से. देखो हनुमान जी का जन्म कहाँ है, वानर परिवार में. बहुत ऊंचा परिवार नहीं माना जाता. नहीं, हम ये नहीं बोलते तुम कितने सुंदर हो, बिल्कुल वानर की तरह हो ये. लेकिन हनुमान जी भक्तों में श्रेष्ठ माने जाते. गरुड़ जी का कौन सा परिवार है, सुदामा की कितनी वेल्थ है, सुदामा तो बहुत गरीब थे. कुब्जा की क्या सुंदरता है, वो तो कुबड़ी है दिखने में, लेकिन भगवान ने उनकी सेवाओं को स्वीकार किया. शबरी की क्या जाति है, शबरी तो एक भिलनी, एक जंगल में रहने वाले जो निम्न श्रेणी की जाति के, लेकिन भगवान राम उनके बेर को, चखे हुए बेर को स्वीकार कर रहे हैं. विदुर जाति से कौन है, शूद्र जाति के, लेकिन भगवान उनको स्वीकार कर. ऐसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक भक्त थे श्रीधर खोला बेचर, वो केले के पत्ते बेचते थे और भगवान चैतन्य महाप्रभु उनके पास जाकर पूछते थे क्या दाम है, और जो भी वो दाम बताते बोलते इतना नहीं मैं आधा दूंगा, और दोनों में बहुत देर तक इस बात पर चर्चा चलती रहती थी. और अंत में श्रीधर बोलते आप ले जाओ, ऐसे ले जाओ. भगवान उनको बोलते थे आप गंगा की सेवा कर रहे हो, गंगा मेरी दासी है, गंगा मेरे चरणों से आ रही. तो भगवान दो या तीन घंटे रोज बिताते श्रीधर से बातचीत करने के लिए, जो एक गरीब परिवार से, इतने गरीब थे कि उनके फटे हुए कपड़े होते थे. और एक दिन चैतन्य महाप्रभु बोले श्रीधर तुम अपने आप को गरीब समझते हो लेकिन वास्तव में तुम्हारे पास सबसे बड़ी संपत्ति है, मैं एक दिन दुनिया को दिखाऊंगा आपकी संपत्ति. और काजी का उद्धार करने के बाद चैतन्य महाप्रभु जाते हैं और श्रीधर के घर के बाहर एक पुराना बर्तन होता है, इतना पुराना कि अगर कोई गरीब चोर भी ले जाए, चोर में भी दो होते हैं अमीर चोर गरीब चोर, अगर गरीब चोर भी ले जाए तो वापस अगले दिन वापस रख देता है क्योंकि इससे कोई वैल्यू नहीं है, नाम भी खराब होगा एक और चोरी किया. इतना खराब था, उसमें होल बने हुए थे. और महाप्रभु वो लोटे से पानी पीने गए, श्रीधर उसका सब कामों के लिए उपयोग करते थे. तब श्रीधर बोले प्रभु ये क्या कर रहे हो, भगवान बोले मैं दिखाना चाहता हूं कि मेरे भक्त से संबंधित चीज कितनी मुझे प्रिय है. और पीने के बाद बोले आज पहली बार मुझे कृष्ण प्रेम का अनुभव हो रहा है क्योंकि मैं अपने भक्त की दी हुई चीजों का आस्वादन कर रहा हूं. तो यही चीज प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, भगवान विप्रा द्विषद गुणा अरविंद नाभ पादारविंद विमुखा शपच वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचनार्थ प्राणम पुनति सकलम नतु भूरिमान. कोई अगर विप्र परिवार से ब्राह्मण है, सत्य शौच दया सारे सद्गुण है, लेकिन अगर वो भगवान का भक्त नहीं है, उससे अच्छा वो है जो चंडाल परिवार में है, अधम है, और अगर वो भगवान का नाम ले रहे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. क्योंकि जो भगवान का नाम ले रहे वो अपना भी उद्धार कर लेगा और अपने साथ साथ कई पीढ़ियों का भी उद्धार कर देगा. और जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा वो ब्राह्मण परिवार में होकर भी स्वयं का उद्धार नहीं कर सकता. फिर उसके बाद प्रहलाद महाराज बोलते हैं, भगवान जैसे मान लो मैं अभी यहाँ पे तिलक लगाता हूँ और यहाँ पे आईना है मिरर, तो अगर मैंने यहाँ पे तिलक लगाया तो आईने में अपने आप तिलक दिखाई पड़ेगा. कोई अपने शरीर को सजाता है तो आईने में सजावट दिखाई पड़ती है, लेकिन अगर आप खाली यहाँ तिलक लगाते हो तो इधर नहीं दिखाई पड़ता है. ऐसे ही अगर कोई भगवान की सेवा करता है तो स्वयं अपने आप संतुष्ट हो जाता है. प्रभुपाद जी बोलते हैं जो डीटीज को डेकोरेट करते हैं सजाते हैं तो उनको अपने आप को सजाने की इच्छा खत्म हो जाती है. जब भगवान के लिए सुंदर सुंदर भोग बनाते हैं तो उनको स्वयं स्वादिष्ट भोजन करने की इच्छा खत्म हो जाती है. हे प्रभु मैं आपसे ये वरदान मांगूंगा. क्या वरदान मांगते हैं आज के श्लोक में है, ये बाद में आते हैं. इसके पहले तीन वरदान मांगते हैं. एक वरदान वो ये मांगते हैं कि हे प्रभु मैं एक अंधे कुएं में गिरा था जहां पर बहुत सारे सांप थे, मेरे गुरुदेव नारद मुनि ने मुझे उस अंधे कुएं से बाहर निकाला. मैं नारद मुनि की सेवा करना चाहता हूं और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य बताते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान की सेवा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है गुरु की और वैष्णव की सेवा करना। जो व्यक्ति ये कहता है भगवान मैं आपका भक्त हूं, भगवान बोलते हैं मैं वो मेरा भक्त नहीं है, लेकिन जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। ये प्रहलाद महाराज एक वरदान ये मांगते हैं कि मैं आपके सेवक नारद मुनि का सेवा करना चाहता हूं। और एक वरदान जो आज के श्लोक में है वो बोल रहे हैं, यदि दास्यसि मे कामान वरांस्त्वां वर दर्शव कामानां हृत्सं वरं भवत् विरणं वरम। हे सर्वश्रेष्ठ वरदाता, यदि आप कुछ वरदान देना ही चाहते हो तो मुझे ये वरदान दो कि मेरे इच्छे में मेरे अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं। ये वरदान क्या मांगना है कि मैं वरदान मांगू ही नहीं, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, न धनम न जन्म न सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामे। प्रहलाद महाराज बोलते हैं अगर कोई सेवक सेवा करने के बाद बदले में कुछ मांगता है तो वो सेवक नहीं कहा जा सकता, वो तो बिजनेसमैन हो गया, वो व्यापारी हो गया। जैसे आप दुकान में जाओ, कोई बोलता है क्या सेवा करें आपको क्या दे, और बाद में आपका जेब हल्का कर देते हैं। तो मटेरियल वर्ल्ड में जो सेवा है वो सेवा नहीं है, वो व्यापार है। लेकिन भक्ति का मतलब है न धनम न जन्म न सुंदरीम कवितम वा जगदीश काममये मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे भवतात् भक्ति रहितु कीत्वै। मैं जन्म जन्म आपकी सेवा करना चाहता हूं। और एक वरदान प्रहलाद महाराज मांगते हैं, वो क्या मांगते हैं किसी को मालूम है क्या वरदान मांगते हैं? प्लीज फॉरगिव माय फादर, बोलते हैं मेरे पिता श्रीमान हिरण्यकशिपु प्रभु, इन्होंने इतने अपराध किए थे आपके विरुद्ध निंदा की थी और आपके भक्तों को तकलीफ दी थी, आप उनको माफ कर दो। मतलब प्रहलाद के अंदर कितनी दया की भावना। आज तो पिताजी और बेटे के बीच में कई सारे कोर्ट केस चलते रहते हैं। आप जाओगे कोर्ट में तो जनरली झगड़े ज्यादा करके पति पत्नी भाई भाई और पिता और बेटे के बीच में होते हैं मेजोरिटी। ये ना जिससे ज्यादा संबंध होता है प्रेम भी ज्यादा होता है झगड़ा भी ज्यादा होता है। लेकिन प्रहलाद चाहते तो बोल सकते थे भगवान मेरे पिताजी ने अपराध किया उसको यमराज के पास ले जाओ पूरा हिसाब क्लियर करो, मैं देखना चाहता हूँ कि इनका जवाब पत्थर से दिया जाना चाहिए, है ना। लेकिन प्रहलाद महाराज बोल रहे मेरे पिताजी को क्षमा कर दो। भगवान बोले उनका उद्धार ऑलरेडी हो गया, उनका ही नहीं त्रिसप्त सप्त यानी सात त्रिसप्त मतलब 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया। मतलब आपके पिता पिता के पिता दादा के पिता पिता के माता के पिता पिता के माता सब 21। और प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में इसका मतलब पूर्व जन्म में भी जो पिता थे उनका भी उद्धार हो गया। तो एक शुद्ध भक्त बनने पे कितने सारे लोगों का उद्धार हो जाए। इसलिए अगर आप अपने पिता माता दादा दादी या चाचा चाची या बेटे बेटी किसी का भी कल्याण करना चाहते हो तो आप शुद्ध भक्त बन जाओ। अगर आप शुद्ध भक्त बन जाओ तो उनको भी एक फ्री टिकट मिल जाता है, एक के साथ 21 टिकट फ्री मिल रहे हैं। ये नर्सिंग ऑफर है, नर्सिंग की दोषी के दिन स्पेशल ऑफर, यू नो बाय वन गेट 21 फ्री। ये भगवान नसीब इतने दयालु हैं। इसके बाद प्रहलाद महाराज बोलते हैं भगवान ये भयानक आपका मुंह है, ये दांत ये जीभ सब लोग देख के डर रहे हैं, मुझे डर नहीं लगता इससे, मुझे डर लगता है ये जन्म मृत्यु के चक्र से, ये भयानक चक्र से। हे भगवान बालस्य नेह शरणम पितरो, एक छोटे बच्चे की रक्षा माता पिता नहीं कर सकते, प्रयास करना चाहिए माता पिता को रक्षा करने का लेकिन रक्षा कर नहीं सकते। ऐसी एक डूबती नौका को कैप्टन नहीं बचा सकते, है ना। हमारे देवानंद पंडित प्रभु पहले बहुत बड़े ऑफिसर थे इंडियन नेवी में, है ना। लेकिन उनको पता चला कि नेवी क्या है, अंत में नेवी हो या एडमिरल हो सब डूबने वाले, तो इसलिए इस्कॉन की शिप में आ गए, है ना, जिसके चीफ कैप्टन प्रभुपाद है ना। तो एक बहुत फेमस कहानी है कि एक बड़ा फेमस जहाज बनाया गया था, ये बताया गया था कि बहुत अच्छा जहाज है कोई नहीं डुबो सकता इसको। कौन सी कहानी है? टाइटैनिक 1912 में एडवर्टाइज किया गया था। वो शिप ऐसा है कि द शिप दैट इवन गॉड कैन नॉट सिंक। भगवान भी भगवान को चैलेंज किया, भगवान बोले बेटे आ जाओ हो जाओ, हाँ 1-1 मैच हो जाए। और पहले ही टूर्नामेंट में पहला सेट में पहले गेम में पूरा ही नष्ट कर दिया, ये ना एक आइसबर्ग से टकरा गया। और एक्चुअली उसमें एडवर्टाइज किया गया था कि जो भी ये जहाज में जाएगा उसका नाम इतिहास के पुस्तकों में रहेगा। और सही में उनका नाम इतिहास में रहा है ना, राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण टाइटैनिक के नॉट से पहली जर्नी में एक आइसबर्ग से टकरा गया और वो कैप्टन मैसेजेस भेज रहे हैं और लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि अरे ये शिप अभी 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 निकला है, कैसे इसमें हो सकता है। भगवान दिखाते हैं कि मैं ही रक्षक हूं। प्रभुपाद और एक उदाहरण देते हैं, एक हाथी है और एक मछली है। मेरे प्रश्न का जवाब दो, हाथी और मछली इसमें शक्तिशाली ज्यादा शक्ति किसके अंदर है? हाथी के अंदर। अगर जमीन में टूर्नामेंट हो रहा है मछली वर्सेस हाथी, आप देख ही नहीं पाओगे क्योंकि हाथी के पैर के अंदर मछली खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर पानी में डाला जाए, गहरे पानी में, तो क्या होगा? हाथी को डाल दिया जाए तो राम नाम सत्य है और मछली तैर लेगी। इसका क्या तात्पर्य क्या है कि इस संसार में जो भाव सागर में बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन साइंटिस्ट बिजनेसमैन करोड़पति अरबपति नरकपति ये सब हाथी की तरह है, ये सब डूब जाएंगे जन्म मृत्यु के सागर में। और इस्कॉन डिवोटीज जो है वो मछली की तरह है, वो तैरना जानते हैं। तैरना का मतलब है भीड़ बैग में हाथ डाल के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। इसका हम रोज अभ्यास कर रहे हैं, हम 16 बार अभ्यास करते हैं जिसे अंतकाले च मामेव हम भगवान को याद कर सकते। तो प्रभुपाद ये लिखते हैं तात्पर्य में कि भगवान की शरणागति सब कुछ है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं भगवान वो समय कब आएगा जब आप मुझे अपने चरणों में स्थान देंगे। ऐसे हम भी जब जप करते हैं तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, ऐ नंद तनुजा किंकरम पतितम माम विषम भवम बुधौ कृपया तव पाद पंकज सित धूलि सदृशम विचिंत्य। हे नंद नंदन हे कृष्ण, मैं भव सागर में डूब रहा हूं, कई जन्मों से आपसे बिछुड़ा हुआ हूं, प्लीज मुझे बाहर निकालिए, मुझे निकालिए। प्रभुपाद जी के एक बहुत ही सीनियर शिष्य हैं गौर गोविंद महाराज, जो बहुत सीनियर रहे और 20 साल पहले भगवत धाम चले गए, वो बताते हैं अपने लेक्चर में, अनलेस यू क्राई फॉर कृष्णा यू कैनॉट गेट कृष्णा। जब तक आप कृष्णा के रोगे नहीं तो कृष्णा नहीं मिलेंगे। बस क्राई रो के बोले कृष्णा, ओ गोविंद देव, ओ गोपीनाथ श्याम सुंदर कृष्ण बलराम, मैं बहुत जन्मों से बिछुड़ गया हूं, मैं तड़फ रहा हूं आपके आपके बिना, मेरे को और कोई नहीं आश्रय है, आपके चरणों में स्थान दो मुझे। जब ऐसे आप चैंटिंग करोगे रोते रोते, कृष्णा मुझे अपने चरणों में ले लो, कृष्णा प्लीज, कृष्णा मैं बहुत कठिनाई में हूं, मैं भटका हुआ हूं, आप ही मेरे एकमात्र आश्रय हो, आपके बिना कोई नहीं है। आहा प्रभु नंद सुत वृषभानु सुत युत करुणा करो ए बारो नरोतम दास को हे नाथे लिहो रंग पाए तुम बिना क्या छे अमार, तुम बिना क्या छे आपके सिवाय कोई नहीं है। तब तब भगवान श्याम सुंदर हमें भव सागर से निकाल देंगे। आपने भगवद गीता में वो पेंटिंग देखे, एक भक्त डूब रहे और भगवान आ रहे हैं उनको, ते श्याम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर, भगवान उनको उठा के ले, तुम्हें पुकारना है तो फिर कृष्ण तुरंत आएंगे। बस भगवान वेट कर रहे हैं कि कब आप पुकारोगे। अगर सच्चे दिल से एक बार भी पुकारो आज के दिन जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, बस एक बार आपने भगवान को पुकार दिया, कृष्ण बोलते हैं जो एक बार बोलता है मैं आपकी शरण में आया हूं मैं कभी नहीं त्यागता। अभी मान लो आपका पतन भी हो जाता है, आप होगा नहीं, लेकिन अगर किसी का पतन भी हो जाता है, अगर उसने एक बार वृंदावन धाम में भगवान कृष्ण का नाम सच्चे दिल से लिया है तो भगवान अंत में उसको अपने धाम। कितने सारे उदाहरण हुए, इस मंदिर के जो मेन आर्किटेक्ट सुरभि स्वामी ने मंदिर का डिजाइन किया, वो एक साधारण विद्यार्थी थे, बंबई में घूम रहे थे, आप प्रभुपाद जी से मिले, प्रभुपाद जी ने पूछा आप कौन हो, बोले मैं मंदिर स्टडी करने आया हूँ भारत में आर्किटेक्चर, प्रभुपाद बोले स्टडी करना छोड़ो अब मंदिर बनाओ अभी। प्रभुपाद के गाइडेंस में उन्होंने मंदिर बनवाया, बंबई का यू मंदिर, चीफ आर्किटेक्ट। लेकिन बाद में माया की शक्ति से प्रभुपाद जाने के बाद वो अलग हो गए थे भक्तों से, और आज से 3-4 साल पहले जब इस मंदिर के 40 साल पूरे हुए तो वो यहाँ पर आए, प्रभुपाद जी का गुणगान किया, फिर चले गए। लेकिन बाद में उनको बहुत बीमारी हो गई, जब आखिरी समय आया तो किसी भक्त ने उनको यहाँ वृंदावन वापस लेकर आए, और यहीं MPT में थे वो, जिस दिन आए उसके एक दिन बाद 2 दिन बाद राधा श्याम सुंदर को याद करते हुए वापस गोलोक वृंदावन चले गए। ये भगवान का वचन है, जिसने मेरी थोड़ी भी सेवा की है मैं कभी नहीं भूलता। आपने एक बार भी अगर मंगल आरती अटेंड की तो भगवान याद रखेंगे, मतलब ज्यादा भी करना चाहिए लेकिन कम से कम एक बार भी हरि नाम लिए भगवान याद करेंगे, एक बार भी आपने वैष्णव को प्रसाद सर्व किए भगवान याद करेंगे, एक बार पुस्तक बांटी याद करेंगे, एक बार भी आपने स्वीट राइस खाया अभी नहीं कल तो भगवान याद करेंगे इसने मेरा प्रसाद लिया। कितने दयालु हैं भगवान। पूतना ने तो भगवान को जहर दिया था, उसको भगवान ने उद्धार कर दिया। तो फिर आप सब जो भगवान राधा श्याम सुंदर के लिए सेवा कर रहे हैं भगवान कभी नहीं भूलेंगे। आज के दिन नरसिंह भगवान से हमें प्रार्थना करनी है कि मेरा भी उद्धार करो, हे भगवान मुझे अपने चरणों में स्थान दो। और अभी आखिरी में हम गौर लीला में बताएंगे चैतन्य महाप्रभु की लीला में नरसिंह भगवान कहाँ कहाँ आते हैं। एक दिन चैतन्य महाप्रभु अपने घर में बैठे थे और एक भक्त सब भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम बोल रहे थे, उसमें एक नाम आया नरसिंह नरसिंह। बोलिए, लगता है आप लोग व्रत रख के थक गए। अभी तो व्रत शुरुआत हुआ है, शाम के 7 बजे तक, ज्यादा नहीं खाली 9 ही घंटे बचे हैं अभी तक। तो जोर से बोले नरसिंह 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 नरसिंह। मैं एक बात बताना भूल गया, मैंने आपको सिंहाचलम की कहानी बताई थी ना, जहां आधा वराह देव और आधा नरसिंह देव है। ये जो मंदिर है ये एक्चुअली कुछ देर के लिए भगवान की ड्यूटी सतयुग में स्थापना की गई थी, लेकिन कुछ समय बाद ये ड्यूटी ऐसे पड़े हुए थे जंगल में। और एक राजा वहां से गुजर रहे थे जिसका नाम था झियाड़, और वो राजा को जा रहे थे, आवाज आई मेरे को भूख लगी है मुझे प्यास लगी है। तो उसने देखा तो अंदर भगवान के विग्रह थे और उसने मंदिर का निर्माण किया भगवान के लिए। और उनकी इच्छा थी कि मंदिर का नाम मेरे पीछे हो, जो मेरा उनका नाम था झियाड़, इसलिए मंदिर का नाम हो गया झियाड़ नरसिंह, झियाड़ नरसिंह, जहां पर भगवान आधा वराह देव और आधा नरसिंह देव। आधा वराह देव आधा नरसिंह, हाँ, सिंहाचलम में। ये भी भगवान का एक विग्रह है सिंहाचलम, जो हमेशा चंदन से ढका जाता है। एनीवे, तो मैं आपको बता रहा था कि नरसिंह भगवान वहां पे जब चैतन्य महाप्रभु गए सिंहाचलम में तो उन्होंने क्या प्रार्थना की, आज हम वो प्रार्थना बोलेंगे। आप मेरे पीछे बोलिए, जय नरसिंह श्री नरसिंह, जय जय श्री नरसिंह, प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग। इसका मतलब है जय नरसिंह श्री नरसिंह, जय जय नरसिंह, भगवान नरसिंह देव की जय हो। प्रहलाद ईश, प्रहलाद के ईश्वर, जय पद्म मुख पद्म भृंग, उनका मुंह जो है पद्म की तरह कमल की तरह है, और लक्ष्मी देवी जो है उनकी गोद में बैठी हैं, और लक्ष्मी देवी उनके मुख को देख रहे हैं जैसे एक भृंगी एक कीड़ा होता है बम्बल भंवरा जो कमल के रस का आस्वादन करता है, ऐसे लक्ष्मी देवी भगवान के दिव्य रूप का अवलोकन कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक देख रहे हैं। और तब चैतन्य महाप्रभु ने और एक श्लोक बोला जो प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि जो सिंहनी, सिंहनी लायनेस को क्या बोलते हैं, सिंह सिंह सिंहनी है ना, सिंहन सिंहनी, यस सिंहनी है जो मिसेस लायन, वो बहुत गुस्से होती है। आप कभी लायन या लायनेस शेर या शेरनी के पास गए हैं, आप दूर से दर्शन करना अच्छा है, अगर आपने उनका दर्शन किया था तो आज आपके दर्शन मुझे नहीं होते है ना, क्योंकि शेर, लेकिन वो सबके लिए एकदम डर पैदा करने जो भी देखते हैं डर के मारे भाग जाते हैं। लेकिन वही शेरनी जब अपने बच्चे को उठाती है तो कैसा लगता है उसको, वो बहुत प्रेम से उठाती है, बहुत दया से उठाती है। ऐसे वही भगवान नरसिंह देव जो हिरण्यकशिपु के लिए काल के समान है, वही प्रहलाद के लिए एकदम माता के समान। प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्त और अभक्त में अंतर क्या है, जब अभक्त है जब भगवान आते हैं मृत्यु के रूप में तो ऐसे डरते हैं जैसे चूहा बिल्ली को देखे क्या लगता है, चूहे बिल्ली को देखे सोचता है हरे कृष्ण राम नाम सत्य है, एटीएम अकाउंट बंद करने का टाइम आ गया है, मृत्यु, चूहे को डर लगता है। लेकिन वही वही बिल्ली अपने बच्चे को उठाती है तो माँ बच्चे को क्या लगता है, माँ मुझे उठा रही है, वही दांत है। ऐसे वही जब अभक्त को जब मृत्यु है जो डर जाता है कई व्यक्ति को तो मृत्यु के समय मल मूत्र निकल जाए डर के मारे, यू नो। और भक्त होता है जब मृत्यु आती है तो सोचते हैं कृष्ण इज कॉलिंग मी बैक होम बैक टू गॉड। जब भीष्म देव ने प्राण त्याग किए कुरुक्षेत्र में तो इतने खुश थे भगवान को सामने देखते भगवान का गुणगान करते। जब हरिदास ठाकुर ने प्राण त्याग किए जगन्नाथपुरी में तो चैतन्य महाप्रभु को पास में बुलाया, उनके चरणों को छाती पर रखा, उनके मुख का अवलोकन करने लगे और मुंह से बोल रहे थे श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक बोलते हैं कौन से मंदिर में? सिंहाचलम। अरे हम लोग लास्ट भाग में आ रहे हैं गौर लीला में। चैतन्य महाप्रभु कैसे नरसिंह लीला में भाग लेते हैं। एक दिन श्रीवास ठाकुर के घर में जब सहस्त्र नाम बोल रहे थे तो किसी ने नरसिंह नाम बोला तो भगवान चैतन्य महाप्रभु नरसिंह के भाव में आ गए, नरसिम्हा नरसिम्हा बोल के उन्होंने एक हाथ में गदा उठाई और बाहर निकलने लगे। नवद्वीप में जो भी देखा वो डर के मारे भागने लगे। फिर थोड़ी देर बाद भगवान शांत हो गए। भगवान श्रीवास को बोले श्रीवास क्या हुआ? मैंने अपराध कर दिया, मैंने भक्तों के हृदय में डर पैदा किया। श्रीवास बोले जिसने आपको देखा वो डर से मुक्त हो गए, आपको आपके कोई डर नहीं है किसी बात। एक दिन क्या हुआ, श्रीवास ठाकुर को समाचार मिला मुसलमान सैनिक आ रहे हैं, मुसलमान सैनिक आ रहे हैं और सारे डिवोटीज डर गए। और श्रीवास ठाकुर अपने घर में नरसिंह भगवान की आरती करने लगे क्योंकि उनको लगा कि नरसिंह भगवान रक्षा करेंगे। उनको अपना डर नहीं था लेकिन बाकी भक्तों का डर था। उधर दरवाजे के पास महाप्रभु आए, श्रीवास दरवाजा खोलो श्रीवास। श्रीवास पूजा में इतने मग्न उनको पता ही नहीं। महाप्रभु ने इतनी जोर से धक्का दिया दरवाजा टूट गया और भगवान आए बोले श्रीवास तुम डर रहे हो, क्यों डर रहे हो? जिस भगवान की तुम पूजा कर रहे हो वो मैं ही हूं। और श्रीवास ने पीछे मुड़ के देखा तो भगवान गौरंग महाप्रभु ने कौन सा रूप धारण किया था? नरसिंह देव भगवान की। और श्रीवास प्रणाम करने लगे भगवान के इस अद्भुत रूप को देखकर, चतुर्भुज रूप में नरसिंह भगवान। भगवान बोले श्रीवास तुमको डर लग रहा है उस मुसलमान सैनिकों का? तुम जानते नहीं हो उन मुसलमानों का राजा कौन है। मैं उस राजा के हृदय में हूं और अगर मैं राजा को आदेश दूंगा तो वो आदेश देगा तुमको गिरफ्तार करने का। समझ में आया आपको? सब लोग जाग रहे हैं ना, हरी नींद आ रही है तो बोलो हरी हरी। ओके ठीक है, सब जागते रहिए, बस 5 मिनट और बचे हैं। तो नरसिंह भगवान का भगवान ने रूप दिखाया और श्रीवास प्रणाम करने लगे उनको। और भगवान बोले श्रीवास तुम डरो मत, मैं राजा के हृदय में हूं और अगर मैं राजा को आदेश दूंगा गिरफ्तार करने के लिए तभी वो तुमको गिरफ्तार करेंगे, तो उसकी हिम्मत तो नहीं आपको गिरफ्तार करने की। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु बोले श्रीवास को श्रीवास मैं राजा के पास जाऊंगा और बोलूंगा हे राजन बुलाओ अपने मुल्ला और काजी को बुलाओ और उनको बोलो अपने नमाज से पाठ करें और जानवरों को भी प्रेम प्रदान करें। मैं जंगली जानवर और हाथी को ले आऊंगा और बोलूंगा नमाज करने के लिए प्रार्थना करने के लिए, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर मैं जानवरों को पकड़ ले आऊंगा और एक पागल हाथी को पकड़ कर ले आऊंगा और उनको बोलूंगा कि भगवान का नाम लो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और वो जानवर कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होएंगे, उनके आंखों में आंसू आने लगेंगे और वो भगवान का नाम गाने लगेंगे हरी 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 हरी। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु बोले श्रीवास आपको विश्वास नहीं है, मैं अभी बताता हूं। उस समय एक छोटी बालिका थी, क्या नाम था उसका छोटी लड़की का? नारायणी। क्या उम्र थी उसकी? 4 वर्ष। वो श्रीवास ठाकुर के भतीजी भाई की लड़की थी। भगवान श्री नारायणी को नारायणी बोलो कृष्ण कृष्ण, और नारायणी कृष्णा ओ कृष्णा कृष्णा बोलते रोने लगे, शरीर में प्रेम के लक्षण प्रकट हुए, रोमांचकम पर अश्रु आने लगे और सारे भक्त देखकर आश्चर्यचकित हो गए। और फिर महाप्रभु ने पूछा श्रीवास आप बोलो आपको डर है आपको? श्रीवास बोले मुझे कुछ डर नहीं है, अगर मृत्यु का भी समय आए अगर प्रलय भी आ जाए तो मैं आपका नाम गाऊंगा गौरांगा 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 गौ। गौरंग 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 गौर। ये एक लीला है भगवान नरसिंह लीला दिया था। दूसरा है काजी के, काजी की लीला कितनों को मालूम है? आप सब जानते हैं कि काजी ने एक दिन मृदंग तोड़ दिया, भक्तों में डर पैदा कर दिया, तो सारे भक्त जो है डर के मारे चले गए चैतन्य महाप्रभु के पास। अब क्या किया जाए, इसने हमने मृदंग तोड़ दिया, हमको धमकी दी है, अगर कोई वैष्णव धर्म का अभ्यास करेगा उसको मृत्यु दंड या मुसलमान बना दिया जाएगा। तो महाप्रभु बोले आप घबराओ मत, आप सब अपने अपने घर में जाओ प्रसाद खाओ। महाप्रभु ने बोला, मैं नहीं बोल रहा, हमारा फास्टिंग है, अपने अपने घर में जाके प्रसाद खा के फिर शाम को लौट कर आना, और क्या लेके आना अपने साथ साथ, मसाले लेकर आना। सब घर में गए और सब मसाले बनाने लगे, बड़े भी और छोटे बच्चों का भी उत्साह हो गया, पुरुष भी स्त्री भी बूढ़े भी जवान हो गए मसाले बनाने के लिए, और सब मसालों को जलाते हुए शाम को निकल पड़े। और प्रभुपाद वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं इतना प्रकाश आ गया ऐसा लगा कि 1000 सूर्य एक साथ प्रकट हो गए, और सब कीर्तन करते हुए काशी के घर की तरफ निकल पड़े। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पहले तो काशी को लगा कोई बारात आ रही है, कोई कीर्तन कोई संगीत की पार्टी है, लेकिन फिर भक्त जैसे पास में आए तो गाने लगे मुर्दाबाद मुर्दाबाद काशी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। फिर काशी ने ध्यान से सुना तो बोले कोई दूसरा कीर्तन लग रहा है, ये तो मेरा विरोध कर रहे हैं। उसने दो लोगों को भेजा, जाओ कीर्तन को रोक के आओ। तो दो व्यक्ति गए कीर्तन को रोकने के लिए, कोई कीर्तन कर कपड़े बंद करो, जैसे ही हाथ पकड़ा उनको भी करंट लग गया और वो भी गाने लगे हरी 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 हरी, और वो भूल गए कि हम मुसलमान। और उन्होंने क्या किया, अपनी दाढ़ी को ऐसे फोल्ड करके कपड़ा बांधे पता नहीं चले, इन्हें तो आई कार्ड से मालूम पड़ जाता था। उतने में वो दो आए नहीं लौट के, तो काजी ने और दो को भेजा, रे जाओ तुम्हारे पार्षद को वापस बुला कर ले आओ। तो ये दो जब गए पता लगाने के लिए, ढूंढ रहे हैं कहां, यही है, ये देखो तुमने कपड़ा बांध दिया, यही दो व्यक्ति है, तो चलो वापस चलो। जैसे उनको पकड़ा उनको भी करंट लग गया और वो भी गाने लगे हरी 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 हरी। ज्यादा नहीं, सिर्फ शाम के 7 बजे तक बोली हरी 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 हरी, सब हरी का नाम लेने लगे। तब काजी ने डर के मारे दरवाजा बंद कर दिया और दुबक के बैठ गया बिल्ली की तरह। अभी लास्ट भाग है, ध्यान से सुनिए। अब क्या हुआ, भक्तों को इतना गुस्सा आया, बोले कोई दरवाजा नहीं खोल रहा, तो सबने जाके उसका बगीचा नष्ट किया, गार्डन तोड़ दिया, एक पेड़ पे एक पौधा एक पत्ती भी नहीं बचा। अरे एक बोला काजी आएगा ना इसकी पिटाई कर दूंगा, दूसरा बोला मैं इसको उल्टा लटका दूंगा। सब ऐसे बोल गए, काजी सुन रहा था अपनी लीला अपनी महिमा ये ना। और थोड़ी देर बाद गुस्सा शांत हुआ और काजी ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के बोला ओ निमाई पंडित आई आपका स्वागत है। एक्चुअली निमाई तुम्हारे नाना है नीलांबर चक्रवर्ती, तुम्हारे नाना जो है वो मेरे चाचा लगते हैं, इसका मतलब मैं तुम्हारा मामा हुआ तुम मेरे भांजे हुए। तो निमाई हंस के बोले अच्छा काजी मामा, भांजा जब घर में आता है तो मामा दरवाजा क्यों बंद कर देते, ये कहां की रीत है। तो काजी बोला नहीं नहीं एक्चुअली क्या है, कभी कभी मामा गलती करते हैं तो भांजा माफ कर देते हैं, और कभी कभी अगर भांजा गुस्से में होता है तो मामा दरवाजा बंद कर देते। फिर दोनों में बातचीत होने लगी, महाप्रभु ने पूछा आप गाय की हत्या क्यों करते हो, तो काजी बोला देखो एक्चुअली प्रवृत्ति और निवृत्ति दो मार्ग है मुसलमानों में भी, निवृत्ति मार्ग में हम कोई जानवर को नहीं मारते लेकिन प्रवृत्ति मार्ग में मारते हैं, लेकिन आपके हिंदुओं में भी तो बलि चढ़ाते हैं, बकरी की बलि चढ़ाते हैं गाय की बलि चढ़ाते हैं, वो क्या है। तो महाप्रभु ने बताया कि कभी कभी वैदिक धर्म में कोई बूढ़े जानवर को बलि चढ़ाया जाता है, इसको नया शरीर मिल जाए ऊंचा शरीर, और साथ साथ मंत्रों की परीक्षा करने के लिए होता है, लेकिन कलयुग में अश्वमेधम गोमेधम ये सब यज्ञ वर्जित हैं। कलयुग में सारे यज्ञ कोई भी यज्ञ का फल नहीं मिलता, सिर्फ एक ही यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। जब हम उत्साह से गाते हैं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, फिर दोनों में मीठी मीठी बातें होने लगती, फिर महाप्रभु पूछते हैं, उस दिन तुमने क्या तोड़ा था? मृदंग। तुम मृदंग तोड़ा लेकिन ज्यादा मस्ती नहीं की, बाद में कुछ विरोध नहीं किया किसी को, क्या कारण है? तुम क्या डर गए थे? या काजी बोला, अंदर चलो अंदर, सबके सामने नहीं, अकेले में बताऊंगा। महाप्रभु बोले, ये मेरे ही पार्षद हैं, आप बोलो क्या बोलना है। बोले, उस रात को जब मैं सो गया तो मुझे एक बड़ा भयानक स्वप्न दिखाई पड़ा, और एक बड़ा भयानक व्यक्ति जिसका मुंह शेर का था और बाकी मानव की तरह, वो मेरे छाती के ऊपर चढ़ गए और बोले, काजी तुमने मेरा मृदंग तोड़ा है, मैं तुम्हारी छाती तोड़ूंगा। और एक्चुअली बहुत खाता था, उसका पेट भी मृदंग की तरह था, एक तरफ ऐसे बड़ा है, और वो मेरी छाती के ऊपर चढ़कर अपने नाखों से मुझे खरौंचने लगे। मैं थर थर कांपने लगा, मेरे आंखें डर के मारे बंद हो गए, और मैं घबराए हुए देखकर बोले, काजी उस दिन तुमने ज्यादा शरारत नहीं की, इसलिए मैं अभी तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर इसके बाद कभी तुमने भक्तों का विरोध किया, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे वंश के साथ नाश कर दूंगा। और ऐसे कहकर उन्होंने मुझे छोड़ दिया, और तब मेरी आंखें खुली और मैंने अपने आप को बिस्तर से नीचे पाया। तब महाप्रभु बहुत खुश हुए। वो काजी बोला, प्रभु लेकिन मेरे पाप कैसे दूर होंगे, मैंने इतनी गोहत्या की, उसका क्या होगा? महाप्रभु बोले, तुमने तीन नाम लिए हैं, हरि कृष्ण और राम, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, राम राम, इसलिए तुम्हारे सारे अपराध दूर हो गए। अब तुम ये वचन दो, मेरे सामने ये वचन दो कि इसके बाद तुम कभी भी संकीर्तन का विरोध नहीं करोगे। तो काजी बोले, मैं वचन देता हूं कि न केवल मैं बल्कि मेरे वंश के सब जो भी मुसलमान होंगे कोई कीर्तन का विरोध नहीं करेगा। और आज भी आप जाओगे उस इलाके में तो वहां पे काफी मुसलमान भी हैं जो भक्तों के प्रति अनुकूल है, दोस्ती। इनफैक्ट वहां पर काजी के मृत्यु के बाद उनकी समाधि बनाई गई, और वह समाधि में, चांद काजी की समाधि में, दो पेड़ एक साथ आ रहे हैं। देखा आपने कौन से दो पेड़? एक नीम पेड़ नीमाई के लिए, और दूसरा क्या है, दूसरा पेड़ कौन सा है? चंपक। नीम पेड़ नीमाई के लिए, और काजी का एक नाम था चंपक। जैसे बचपन में नाम होता है ना किसी का, बंटी टुन्नू मुन्नू चुन्नू, ये ना, तो काजी का नाम था चंपक, इसलिए नीम पेड़ और चंपक पेड़। ये हिंदू मुस्लिम की एकता देखा। और एक महान वैष्णव के जीवन का एक कहानी बता के हम अंत करेंगे, समय हो रहा है। वैसे तो आज फास्टिंग ही है तो इसलिए भूख नहीं लगी, भूख लगी भी है तो कोई बात नहीं, आज के दिन एक्स्ट्रा जप करिए। ये कहानी सुनने से आपका उत्साह बढ़ेगा। ये लास्ट कहानी है, रियली लास्ट है। ये नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी, कितने भक्तों ने सुना नरसिम्हानंद? वो किसके भक्त थे? एक्चुअली उनका नाम था प्रद्युम्न ब्रह्मचारी, लेकिन उनका नाम रखा गया नरसिंहानंद। क्यों नाम रखा गया नरसिम्हानंद? क्योंकि वो नरसिंह भवन के भक्त थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु भक्तों को बोले, आप क्यों हर साल पूरी आ रहे हो? अगले साल मैं नवद्वीप में आऊंगा, आपको पूरी आने की आवश्यकता नहीं है। जुलाई रथ यात्रा में आप मत आना, मैं दिसंबर में आऊंगा, पौष महीने में। तो सब भक्तों ने जो अपना टिकट कैंसिल कर दिया, रथ यात्रा में नहीं जाना है। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर हो गया, सारे भक्त वेट कर, महाप्रभु आएंगे महाप्रभु आएंगे, आए नहीं। शिवानंद सेन और जगदानंद दोनों निरानंद हो गए, यू नो, निराश हो गए, सिर पे हाथ रखे बैठे। प्रभु बोले आएंगे, आए नहीं आए नहीं। शिवानंद और जगदानंद को देखकर नरसिम्हानंद आए। नरसिम्हानंद का असली नाम था प्रद्युम्न ब्रह्मचारी, लेकिन क्योंकि वो नरसिंह भगवान के भक्त थे इसलिए उनका नाम बदल के रखा गया नरसिम्हानंद। तो नरसिम्हानंद ने पूछा, आप तो बहुत दुखी लग रहे हो, क्या कारण है? बोले, देखो तुम्हारे प्रभु ने बोला था आएंगे, आए नहीं। बोले, मैं अभी बुलाता हूँ, आप ऐसा करो चावल ले आओ सब्जी ले आओ, मैं भोग बनाओ, मैं अभी भगवान को बुलाता हूँ। वो ध्यान में चले गए दो दिन तक, और फिर भक्तों ने उनको, भक्तों को लगा शायद क्या हो गया, पता नहीं, नहीं हमारे को ध्यान में गया मतलब या तो नींद आ गई या कुछ। फिर तो उनको उठाया, क्या हुआ, भगवान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? बोले, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, भगवान आ गए हैं, पानीहाटी तक आ गए। पानीहाटी कलकत्ता के पास है, वहां से मायापुर पास में ही है। आप ऐसा करो चावल सब्जी बनाना शुरू करो। और उन्होंने स्वयं ने बनाना शुरू किया, और फिर तीन प्लेट बनाए भोग के। एक प्लेट गौरंग नित्य गौर निताई के लिए, भगवान गौरंग के लिए, दूसरा प्लेट जगन्नाथ के लिए, और तीसरा प्लेट अपने इष्ट देव, उनके इष्ट देव कौन है, नरसिंह भगवान के लिए बनाया। और ध्यान करने लगे और ध्यान में देखा भगवान गौरंग आदे गौरंग 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 गौरंग। इतने खुशी हुई कि भगवान साक्षात आ गए और वो प्रसाद सारा खाने लगे। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने अपना प्लेट खाया और जगन्नाथ का प्लेट खाया और नरसिंह का प्लेट भी खाने लगे। बोले ओ प्रभु प्रभु क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो क्या। भक्त ने बोला क्या हो आप दुखी क्यों हो। बोले देखो प्रभु तो आए लेकिन ये क्या कर रहे हैं देखो। यही देख तुम्हारा प्रभु रा व्यवहार आपके प्रभु गौरंग का व्यवहार देखो क्या कर रहे हैं। तीन जनेर भोग एकल खाइल जगन्नाथ नरसिंह उपवासी रहिल। तीनों का प्लेट एक साथ खा लिया। पहले अपना खाया मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जगन्नाथ का भी खाए वो और जगन्नाथ एक हैं जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। लेकिन मेरे नरसिंह भगवान का क्यों खा लिया। मैं नरसिंह भगवान के लिए बनाया था। अब नरसिंह भगवान ने फास्टिंग किया तो मैं भी नहीं खा सकता। आप ऐसा करो फिर से ले आओ फिर से चावल लाए सब्जी लाए अलग से प्लेट बनाया गौरंग जगन्नाथ को आउट कर दिया खाली एक प्लेट नरसिंह भगवान को ऑफर किया और फिर भोग लगाया। और सारे भक्त मन में सोच रहे थे कि क्या मालूम ये व्यक्ति ध्यान में है कि सत्य बोल रहे हैं कैसे मालूम पड़ेगा। मतलब भगवान आए थे कि नहीं आए भी खा के चले गए। अरे 6 महीने बीत गए अभी सबको डाउट था। 6 महीने बाद रथ यात्रा के लिए सारे भक्त गए महाप्रभु से मिलने के लिए। अरे किसी की हिम्मत नहीं पूछे कि आप आए थे कि नहीं आए थे। महाप्रभु स्वयं से बोले गत वर्ष पौष मासे पिछले वर्ष पौष के महीने उत्तम अन्न रंधाइला नरसिंहानंद ने अच्छा प्रसाद खिलाया। कबू ना पाइले ऐसे मिष्ठान भोजन इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया। तो सारे भक्तों को विश्वास हो गया कि नरसिंहानंद प्योर डिवोटी हैं और भगवान गौरंग आए हैं। अब भगवान ने लीला क्यों की नरसिंहानंद के लिए उसको बताने के लिए कि मेरे में और नरसिंह भगवान में कोई अंतर नहीं। साउथ इंडिया में और एक मंदिर है मेलकोटे में जहाँ पर भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए कि प्रहलाद महाराज को लग रहा था मैं कितना पापी हूं मेरे कारण मेरे पिताजी को मारा गया मैं अपने पिता का हत्यारा हूं। तो प्रायश्चित करने के लिए एक पर्वत पे गए साउथ इंडिया में बेंगलोर के पास मैसूर के पास और उस समय भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए उनके लिए। वो भगवान के चरणों के निशान वहां हैं मेलकोटे में। ऐसे बहुत सारे जर्मनी में जब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे तो भक्तों ने इस्कॉन जर्मनी में नरसिंह भगवान की स्थापना की। अमेरिका में न्यू वृंदावन ने भी नरसिंह भगवान की स्थापना की और गौड़ीय मठ में जहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है वहाँ भी नरसिंह भगवान स्थापना किए गए। और हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मायापुर में आज परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज तो हर साल इसलिए मायापुर में जाते हैं आज नरसिंह भगवान का अभिषेक करते हैं। जब इस्कॉन मायापुर में भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे तो नरसिंह भगवान के विग्रह स्थापना किए गए। और हालांकि वो उग्र नरसिंह हैं लेकिन मायापुर में हैं इसलिए बहुत उदार हैं लोग भगवान गौरंग के प्रेम के अधीन हो गए। वो हैं उग्र उग्र नरसिंह लेकिन प्रेम प्रेम के भाव में प्रेम नरसिंह प्रेम देने के भाव। आइए हम सब 2 मिनट आंख बंद करके प्रार्थना करें भगवान नरसिंहदेव से कि हमारे अंदर जो भी बाधाएं हैं जो भी हिरण्यकशिपु जैसी भावनाएं हैं बुरे भाव हैं काम क्रोध लोभ वो उखाड़ के फेंक दें और हमें प्रहलाद के पद चिन्हों में चलने का सुअवसर दें। हम भी प्रहलाद की तरह हरि नाम ले सके दूसरों को हरि नाम बांट सके कृष्ण भक्ति बांट सके। वही प्रहलाद महाराज गौरलीला में फिर से आते हैं। उनका नाम क्या होता है प्रहलाद महाराज जब गौरलीला में आते हैं क्या नाम होता है वासुदेव दत्त। और भगवान बोलते हैं वासुदेव मांगो वरदान मांगो वासुदेव क्या वरदान चाहिए। और वासुदेव क्या बोलते हैं मुझे ये वरदान दो कि सारे जीव भगवत धाम चले जाए जो जितने पापी हैं उनके पाप मुझे दे दो अगर वो भगवत धाम जाने के योग्य नहीं है मुझे पाप दे दो। भगवान हंस के बोले वासुदेव तुम्हारी इच्छा पूरी होगी सब भगवत धाम जाएंगे। वासुदेव बोले उनका पाप मुझे दो मैं नरक जाऊंगा नरक जाने की जरूरत नहीं है उनका उद्धार वैसे ही हो जाएगा तुम्हारी इच्छा से उद्धार हो जाए। तो हम आज वही प्रहलाद महाराज से प्रभुपाद से प्रार्थना करते कि हमारा भी उद्धार करें सबका उद्धार हो जाए सारे जीव राधा श्याम सुंदर के चरणों में आ जाए सब जीव मिलकर गा सकें हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय भगवान नरसिंहदेव की जय प्रहलाद महाराज की जय गौर प्रेमानंदे।